نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 172 سے 176 تک. آج کے سبق کا خلاصہ کیا ہے کہ حلال اور حرام کا اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے. پچھلے سبق کے آخر سے ہی کچھ کھانے پینے کی بات شروع ہو چکی. بات بتائی گئی تھی کہ مشرکین مکہ نے جانوروں کا گوشت کھانے کے بارے میں اپنی مرضی سے کچھ تبدیلیاں کر رکھی تھی. کچھ چیزوں کو حلال قرار دے دیتے جو کہ اصل میں حرام تھی, کچھ کو حرام قرار دے دیتے جو اصل میں حلال تھی, اور ان دونوں کاموں کے کرنے کے دوران بات اللہ پہ لگا دیتے تھے. یہ بالکل ایسے کہ جیسے آج کا کوئی دین کی بات کہنے والا کوئی بات کسی انسان کے فتوے یا کسی اور کی روشنی میں دے اور لوگوں کو یہ احساس ہو یا دیا دلایا جائے کہ یہ بات قرآن یا حدیث میں ہے. کرتے کیوں تھے؟ بتوں کے نام پہ اپنے جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے جس کو ذبح کرنا وہ حرام سمجھتے تھے. یعنی جس جانور کو اپنے کسی بت کے استھان یا جس کو اب درگاہ کہہ لیں وہاں پہ چھوڑتے, ان کا خیال کیا تھا کہ ان کو ذبح کرنا بھی حرام ہے, ان کی سواری بھی حرام ہے, اور اسی طرح سے. اور یہ روایتاً یہ بات ان کے نام پہ چلتی آ رہی تھی. مثلاً سانڈ ہوتا تھا اس کو چھوڑ دیتے, کسی کا کان چیر دیتے, کبھی کہتے یہ فلاں دیوی کی خوشی کے لیے. ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا کلچر میں, بھینٹ چڑھانا. بھینٹ چڑھانے کی والی بات ہے یہ کہ کہتے تھے ہم نے یہ اس کے بھینٹ چڑھا دیے ہیں, بس اب اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا. اب ہوا کیا کہ اسی معاشرے میں اسلام آیا جہاں پہ پہلے جہالت تھی. ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو ہلایا. صحابہ کرام سب کے سب پہلے مشرک گھروں سے تعلق رکھتے تھے. کچھ نہ کچھ اثرات پچھلی زندگیوں کے ہر ایک کی زندگی میں کسی نہ کسی رنگ پہ نظر آ رہے تھے. اور یاد رکھیے, ایک جملہ شعور سے بولوں گی, آپ شعور سے لکھیے گا, کہ عبادات کرنی بہت آسان ہوتی ہیں. آپ کو کوئی 5 کی بجائے 10 نمازیں بھی کہہ دے آپ دن میں شوق سے پڑھ لیں گے, سال کے 30 روزوں کی بجائے اگر آپ کو 50 روزے بھی کہہ دیے جائیں آپ شوق سے رکھ لیں گے. عبادات آسانی سے ہو جاتی ہیں لیکن باپ دادا کی روایات کو توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ وہ بت ہیں جن کی بنیادیں دل کی زمین پہ پڑی ہوتی ہیں. جب اسلام آئے گا یہ تبدیلی لازم آئے گی, کیونکہ پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا کہ ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں, ان کو سب سے زیادہ اللہ سے پیار ہوتا ہے. تو اللہ کا پیار ان کو پھر اس بات پہ مائل کرتا ہے کہ باپ دادا, خاندان, رسم و رواج, ان سب چیزوں کو ایک ایک کر کے چھوڑتا جائے یہ سمجھ کر کہ میرے رب نے مجھے اس کا حکم دیا ہے. لہذا ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی باتیں کر کے دوبارہ خطاب کیا. پیچھے آیت شروع ہوئی تھی یا ایہا الناس سے, آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 172 ہمیں کیا کہتی ہے. یا ایہا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو. پہلے تو اس لفظ پہ غور کر لیجئے کہ پیچھے یا ایہا الناس کہہ کے ساری انسانیت کو خطاب کیا, اور یہاں سے آج آپ دیکھیں گے کہ ہم کھانے پینے کی بات کر رہے ہیں. کھانے پینے کا بندے کی شخصیت پہ بھی اثر ہوتا ہے, کھانے پینے کا بندے کی عبادات پہ بھی اثر ہوتا ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ ایٹنگ ہیبٹس کیا اثر انداز ہوتی ہیں. آپ سب جانتے ہیں, آپ کے گھروں میں 3-4 بچے بھی ہوں گے, ہر ایک اپنے ہسبینڈ کی عادت کو جانتا ہے. جو لوگ ہیوی میل کھاتے ہیں ان کا مزاج گرم ہوتا ہے, جو بیف زیادہ کھاتے ہیں, اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں, کولیسٹرول لیول بڑھتا ہے نا. کچھ لوگ فریش میٹ کھاتے ہیں, سی فوڈ کھاتے ہیں, ان کے مزاج میں دھیما پن ہوتا ہے, ان کے چلنے میں, ان کے بات کرنے میں, ان کے معاملے میں نرمی ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. آپ اپنے بچے کو جو آپ کے سامنے بالکل آرام سے بیٹھا ہوا ہے آپ سے ضد کرتا ہے کہ مجھے کوک چاہیے, آپ اس کو کوک دیتے ہیں پی لیتا ہے, थोड़ी देर बाद वो जिद करता है मुझे आइसक्रीम चाहिए, आप आइसक्रीम भी दे देते हैं। आपको पता है कि तीसरी जब बार दफा उसने चॉकलेट मांगनी है और आप देंगे ना, तो वो फिर जरा जरा सी बात पे ना यूं पाँव मारेगा, फिर गुस्से में आएगा, फिर जमीन पे मचलेगा। हुआ क्या, पहले आपने कोक के कैन के अंदर उसको चीनी की बोरी पिला दी, फिर आपने आइसक्रीम के कप में उसको कई कप कई चम्मच चीनी खिला दिए, और अब चॉकलेट खा के वो हाइपर हो गया। कि जो आज की बच्चे हाइपर दिखते हैं ना, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारी ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं है। हम खजूर नहीं देते बच्चे को, हालांकि वो भी काली होती है, और इसके मुकाबले में काला चॉकलेट देते हैं, बच्चा खा लेता है। सीधा साफ सुथरा पानी या सफेद चमकता हुआ दूध कोई बच्चा नहीं पकड़ेगा, लेकिन काले रंग की कोक जिसमें से धुआं भी निकल रहा है वो भी लेंगे। फर्क पड़ता है। याद रखिए, गाड़ी में जो पेट्रोल डालते हैं ना, गाड़ी वैसे ही चलती है। आपने कभी पेट्रोल पंप पे खड़े होके देखा होगा कि कहीं डीजल की पाइप होती है और कहीं सुपर होता है और कहीं सुप्रीम होता है। हर गाड़ी में मुख्तलिफ पेट्रोल डलता है ना। अच्छी किस्म का डालेंगे तो गाड़ी अच्छा चलेगी, खराब पेट्रोल डालेंगे तो गाड़ी के अंदर कचरा आ सकता है। बिल्कुल यही चीज आप इस वक्त अपने आप को जहन में रखें, फिर आपको सबक समझ आएगा, वरना नहीं आएगा। हम इंसान के गाड़ियों की तरह, हमारा अंदर कितना सेंसिटिव है, नाजुक है, बारीक वेन्स हैं, आर्टरीज हैं। फिर आप देखिए कि हमारे जिस्म के अंदर अंतड़ियां हैं। अगर जिस्म की ये खाल है ना, अल्लाह ना करे अगर यहाँ कोई जरा से छिलका उतर जाए तो अंदर से गोश्त नजर आ जाता है ना, तो आप पानी में हाथ डालेंगे ना, तो पानी आपकी उस कच्ची स्किन के ऊपर मर्चों की तरह लगेगा। तो अब आप सोचिए कि जब हमारा जिस्म अंदर से इतना सेंसिटिव है, तो हम जब जिस्म में कुछ भी डालते हैं, पानी डालें, कोक डालें, पेप्सी डालें, दूध डालें, कुछ भी डालें, डायरेक्ट जाके वो हमारे जिस्म के एक एक रूहे पे असरअंदाज होता है। मिर्चें खाते हैं तो जुबान जलती है, फिर उसके बाद जहां से वो गुजरता जाए और आखिर स्टमक में जलन होती है। ये लग पाता है कि हमें बचपन से खा खा के आदत हो गई है, तो हमें इतनी तकलीफ नहीं होती। जिन्होंने ना खाई हो, कभी आप उनको खिला के देखें, उनके कान सुरख हो जाते हैं। ठीक है, तो जिस तरह हर खाने का एक जाहरी असर होता है, इसी तरह हर खाने का एक छुपा हुआ असर भी होता है, बातनी असर भी होता है। यानी आप कह सकते हैं कि देर आर टू डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ फूड। नंबर फर्स्ट वन इज अपेरेंटली जो हमें दिखता है, फैटी फूड खाएंगे तो फैट हो जाएंगे, फ्रेश फूड खाएंगे तो फ्रेश रहेंगे, सब्जी फ्रूट ज्यादा खा लेंगे तो भागते दौड़ते रहेंगे। पाए और जब आप नान खा लेते हैं तो उस दिन फिर काम होता है भाग भाग के, कैसे जोड़ों में बैठती है। बिरयानी की प्लेट भर के खाएं और साथ ऊपर से लस्सी पी लें और साथ दही खा लें और ऊपर से कुछ अल्लाह रहम करे चावलों की खीर भी खा लें जो सारी रात पकती रही है। फर्क पड़ता है ना। तो खाने का एक जाहरी असर होता है, इसी तरह एक बातनी असर होता है। अल्लाह ताला यहाँ मोमिनों को कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम अमन में आ गए हो, तुम्हारा नाम अब अल्लाह ने ईमान वाला रख दिया है, तो अब करो क्या, कुलू मिन तैयिबाती, पाकीज़ा में से खाओ। मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुमको दिया। तैयिबात का लफ्ज़ देखिए, तैयिबातुन, पाकीज़ा चीजों को खाओ। जरा सिर्फ पाकीज़ा को देखें, पीछे हमने क्या लफ्ज़ पढ़ा था, हलालन तैयिबन, वहां इशारतन बात हुई थी, आज डिटेल से हो रही है। हलाल और तैयब दो टर्म्स थी, यहाँ क्या है, तैयबात, पाकीज़ा में से खाओ। अब इसमें पाकीज़ा में क्या हो गया, नंबर एक वो खाना फ्रेश हो, भून भून के, भून भून के उसके जरा सीमी ना मार दो। हम क्या करते कहते, जब खाने को भूने ना, उसका रंग नहीं आता, टेस्ट नहीं आता, बसांत नहीं जाती, आप देखे उसके अंदर जरासीम कितने रह गए। पहले तो हम इतने मोटे मोटे छिलके उतारते हैं आलुओं के, आपको ये बात पता है कि कोई भी फल सब्जी जो है ना, छिलके के बिल्कुल करीब वाली जगह पे उसके मैक्सिमम विटामिन्स होते हैं। आलू सब्जी जैसे बैंगन, समझे कि शलजम, जिसकी भी छिलका उतरता है ना, सेब, आप उसका छिलका बारीक उतारा करें। अगर आपने उसका मोटा छिलका उतार दिया ना, वो तैयब नहीं रहेगा। ठीक है, फिर आप बताइए कि तैयबात के अंदर क्या, कि धो के खाओ, साफ सुथरा खाओ, असल चीज हो, गला सड़ा ना हो, खराब ना हो। ठीक है, साइज छोटा बड़ा हो नो प्रॉब्लम, लेकिन गला हुआ ना हो। फिर आप देखिए कि तैयबात खाने के लिए बात की गई, तो कुछ चीजें देखने में बहुत साफ सुथरी लगती हैं, लेकिन वो कौन सी होती हैं, तैयब नहीं होती। पान छा लिया क्या है, जुबान जलती है, कट लग जाते हैं लोगों के जुबान पे। फिर आप देखिए कि बस ये कल्चर तो ऐसे है, खाने के बाद जब तक वो छालिया खा ना ले, उनको खाना हजम नहीं होता, आदत हो गई है। है? पत्थर। पत्थर पे क्या चढ़ा हुआ है? मीठा रंग। रंग नहीं भी चढ़ा हुआ, फीकी भी होगी तो उसको रंग करने के लिए सुर्ख रंग डाला होता है। कभी आप कुछ दालें धो के देखें, बस जब हम यहाँ वेस्ट में जब आते हैं बड़े खुश होते हैं कि बड़ी अच्छी दालें हैं, पाकिस्तान में तो छोटी मोटी होती हैं। आप खास तौर पे जो ग्रीन दाल, मूंग की दाल होती है, उसको भिगो दें, आप देखेंगे जो उसके ऊपर पानी आएगा ना, वो ग्रीन कलर का होगा। हमारे मुल्कों में अगर आपको प्योर किसी छोटी सी छोटे से स्टोर की दुकान है ना, तो वो बहुत ऐसी फ्रेश ग्रीन दाल नहीं मिलती, वो गदली सी होगी। और जब आप बाहर बड़े स्टोर्स में इवन अपने मुल्कों में लेते हैं, वो फ्रेश ग्रीन है। होता क्या है, उन्होंने उस पर रंग चढ़ाया। अब आप सोचिए, एक दाल जो जमीन से निकली जिस भी रंग की है, उसको जब आपने उसको सब्ज किया तो कैसे किया होगा? पहले उसके ऊपर कोई गीला रंग चढ़ाया होगा, फिर उसको कहीं किसी ड्रायर्स में सुखाया होगा, ट्रीट हो गई। तो ये बात का एक एंगल समझ लीजिए कि लेस ट्रीटेड चीजें खाओ। आज क्या हालात है, ट्रीटेड कैसे ट्रीट करते हैं। एक ब्रांड का नाम नहीं लेती, बड़ा मारूफ है यहाँ भी, मैंने देखा है अमेरिका में तो पीते ज्यादा वो लोग हैं। तो उन्होंने जूस, ऑरेंज जूस है ना, तो ऑरेंज का डिब्बा जूस है, उसके ऊपर एक बड़ा सा ऑरेंज बना हुआ है और साथ उसके एक सुरिंज बनाई हुई है, और उसमें डाल के लिखा होता है विटामिन डी एडेड। तो मैं वो ऑरेंज को नहीं देखती थी, मैं देखती थी सुरिंज को। हाय हाय, ये सुरिंज डाली थी इन्होंने इसमें, क्या जो उन्होंने उसमें डाला हुआ है। दूध देख ले, विटामिन डी एडेड। किसी में आप देखते हैं ये स्किम मिल्क, ये फुल मिल्क, ये हाफ मिल्क, ये होल मिल्क, ये फलाना मिल्क, ये सब के मुकाबले में भैंस के थनों से निकलता हुआ फ्रेश दूध भी है, अगर आपको अवेलेबल है। यहाँ तो वैसे ही आप देखिए कितनी वैरायटी है ना, बल्कि इधर अगर फ्रेश मिल्क मिलता है तो बताएं कि वो कहाँ मिलता है। क्योंकि आपको मैं सिर्फ एक चीज जो मैंने खुद अपने अपनी एक बहुत करीब की साथी से सुनी, उसके बाद तो दिल ही नहीं करता कि बंदा होल मिल्क पिए। हम यहाँ देखते हैं कि हमारे बच्चे कितनी जल्दी मोटे हो जाते हैं खाते पीते हैं, क्योंकि फूड बहुत एनरिच्ड है। एक ऑरेंज है, नेचर ने उसमें एक खास हद तक वाइटामिन डाल दिया है, उसमें वाइटामिन सी भी है, उसमें फलां भी है, ठीक है, फाइबर भी है। हम क्या करते हैं, फाइबर सारा फेंक के सिर्फ जूस पीते हैं। आप एक ग्लास ऑरेंज जूस देखें, कम से कम 7-8 ऑरेंजेस से निकलता है, फाइबर मोस्टली लोग फेंक देते हैं। अब हुआ क्या कि आपने एक किस्म कैसे जैसे कैल्शियम की 10-12 गोलियां इकट्ठी खा ली हैं, तो वो जिस्म के अंदर जाके कुछ हलचल मचाएगा ना। बात आपको बताने लगी थी दूध की, तो उन्होंने बताया कि दूध जो आमतौर पे आज जहां भी हमारे अपने मुल्कों में इवन लोग वही पीने लग गए, हलीब और फलां, जो पेस्टराइज मिल्क होता है, फितरत ने क्या निजाम रखा है कि अगर भैंस का दूध एक ग्लास है ना, तो इसके अंदर फैट होती है, लेकिन फैट के जो मॉलिक्यूल्स है ना, फितरतन उसके अंदर इस तरह से होता है कि जब हम उस दूध को पीते हैं ना, तो उसके ओनली 5% जो फैट मॉलिक्यूल है ना, वो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होते हैं, जिससे हमें बॉडी को नेचुरल सोर्स मिलता है, हीटिंग का, गर्म होती है, सब है। और जो 95% फैट होती है ना फ्रेश दूध की, वो हमारे जिस्म से एक्सक्रीशंस में मदद देती है। कभी आपने फील किया होगा कि जो ही आप दूध पीते हैं ना, तो एकदम उसके बाद वॉशरूम में जाने की जरूरत पड़ती है, पेट में बल सा उठता है। वो जो हमारे पेट में फासद मादे और कब्ज होती है, किसी को कॉन्स्टिपेशन, आप दूध दें उसको, गर्म पानी, गर्म दूध दें, एकदम पेट खुल साफ हो जाएगा। वो मॉलिक्यूल्स का काम ही ये है कि उन्होंने जिस्म से जल्दी जल्दी गंदगी को निकाल के वो मॉलिक्यूल भी निकल जाते हैं फुसले में। ये तो है नेचर का निजाम। अब होता क्या है कि जब आप इस एक ग्लास दूध को बड़े बड़े मशीनों में डाल के उबालते हैं, पेस्टराइजेशन आपने सुनी होगी, दूध को इतने हाई टेम्परेचर पे उसके ऊपर पकाते हैं, गर्म करते हैं, कि वो सब मॉलिक्यूल जो है ना, वो टूट जाते हैं, और वो टूट के आपके उस दूध में मिल जाते हैं। जब दूध में मिले, तो जिस नेचुरल ग्लास के अंदर 5% फैट थी, वो 100% हो गई। अब हुआ क्या कि जब वो दूध के अंदर मिक्स हो गई, तो जिसने एक ग्लास दूध पीना है, उसने 100% साथ फैट भी पी ली, तो मोटे हो गए। आप गांव देहातों में फ्रेश मिल्क पीने वाला कोई मोटा होता नहीं देखेंगे, हमारे इन मुल्कों में आके, यहाँ आके लोग क्यों मोटे होने लगते हैं, क्योंकि खाना जो है वो आ गया। अब जब ये हुआ, कुछ अरसा ये हुआ, हम बड़े खुश, बड़ा गाढ़ा दूध है, ये अपना दूध ही तो जाए, ये तो पानी डाल देता है, हम इस पे बड़े खुश होते हैं जी, ये कंडेंस मिल्क है, ये फलां मिल्क है, वो फलां मिल्क है। लेकिन हुआ क्या कि अब लोग मोटे होने लगे, फिर बॉडी के अंदर जाके उनकी वो सारे जमा होने लगे, उसके कोलेस्ट्रॉल बना। फिर उन्होंने कहा अब इसका एक और तरीका निकालो, पहले सारा पकाते हैं, वो मिक्स हो गया, फिर उसमें से निकालते हैं, ये कितना है, 5%, ये 10%, ये सेमी स्किम, ये फलाना स्किम। यकीन करें कि ये खूबसूरत लेबल्स में लगा हुआ जहर है जो हम अपने पेटों में डालते हैं। मैं आपको बददिल नहीं कर रही, ना मैं सेम्बरी के खिलाफ हूँ, और ना आपकी टेस्को के खिलाफ हूँ, ना आपके दूधों के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं आपको ये सिर्फ बताना चाहती हूँ कि फितरत पे रहेंगे ना, तो आप खुश रहेंगे। नेचुरल, बच्चा माँ का दूध पीता है, आपने बच्चों को देखा होगा, फीड भी किया होगा, कितना पतला दूध होता है। जो ही बच्चे की खुराक बढ़ती जाती है, माँ का दूध गाढ़ा होने लग जाता है। और उसके बरक्स माँ कहती है इसको फार्मूला दूध पिलाना है, वो पहले ही दिन कर चाहती है कि जवान हो जाए, वो एक ही जगह 4 चम्मच डाल देती है, हर वक्त बच्चों के पेट खराब होते हैं। तो बात क्या है कि जितना मुमकिन हो नेचुरल पे रहें। इसका खाने से ताल्लुक, इस वक्त हम बात कर रहे हैं ना, यकीन करिए ये फितरत सलीमा है। कल हमने अपनी बहन को देखा ना, इन्होंने सिर्फ एक दर्द सुना तो इनके दिल की दुनिया क्यों बदली, क्योंकि इनकी फितरत सलीम थी। अभी इन्होंने अपनी फितरत, अपनी इंस्टिंक्ट को अभी मुतासर नहीं होने दिया। जब एक बंदा नेचुरल माहौल में होता है ना, वो नेचुरल होता है। जब हम किसी एक अपने ऊपर पर्दे को चढ़ा लेते हैं ना, तो खराबी होती है। आप सर्दियां पहले भी आती थी, गर्मियां पहले भी आती थी, हमारे मुल्कों में देख लीजिए, बच्चे बाहर ठंड में फिर रहे होते हैं, पजामा भी नहीं पहना होता बेचारों ने, हैं टंगी नंगी टांगे हैं। कई गरीबों के बच्चे बाहर गलियों में खेल रहे होते हैं, कूड़े पे खेल रहे होते हैं, उनको नहीं कोई जरा सिम चिमटता, ना उनको ठंड लगती है, ना उनको इन्फ्लुएंजा होता है, ना कोई और अजीबो गरीब अंग्रेजी किस्म का नाम होता है उनको। हमारे बच्चे जो हर वक्त थर्मल और टेम्परेचर और ऑपरेटेड और दिस एंड दैट, जरा आप उनको बाहर ले दो उनको हवा लग जाती है। तो इतना लपेट लपूट के ना रखें, हम बहुत सख्त हैं। अपनी डाइट के अंदर जितनी नेचुरल डाइट पैदा करें, कम से कम कुक करें। और हैरत की बात है कि हम मोमिनों को, जिनको अल्लाह यहाँ पुकारता है, हमारा तो चूल्हा ही नहीं बंद होता। सच्ची बात है, ये गोरे हमसे इस लिहाज से बेटर हैं कि वो कहते हैं, उनके मुझे किसी ने बताया कि सिर्फ वीकेंड्स पे हॉट डिनर बनता है इन लोगों के, चूल्हे पे पक के जैसे पास्ता या चीज केक या फलां, ये तो बेचारे सिर्फ वीकेंड पे अफोर्ड कर सकते हैं। शाम को आए घर में, ब्रेड निकाली, उस पे चीज लगाया, बटर लगाया, खा गए, खत्म बात है। चाय बना ली, कॉफी बना ली, हम वो चीजें खाने के बाद खाते हैं जो खाने पे वो खाते हैं। हमारा हाल ये है। वो कहते हैं ना कि एक बंदा डॉक्टर पे गया, तो डॉक्टर ने उसको प्लान दिया कि तुमने इतना सैलड ये खाना है। कहता डॉक्टर सर ये बता दें, खाने से पहले खाना है कि खाने के बाद खाना है। तो हमारा हाल तो ये है। तो कुलू मिन तैजी बात, ये एक एंगल है। खराब ना खाएं, बासी ना खाएं, कम खा लें। हम बहुत सारा खाना चाहते हैं, टेस्ट कॉन्शियस है वो। अब ढूंढने ढूंढने से तो खुदा मिल जाता है, आपको दूध नहीं मिलता। तो बहरहाल ये बात इतनी समझ आ गई, यहां से खाने, अब बस अपनी इशारा करना मकसूद था कि अपनी ईटिंग हैबिट्स को देखें, फिर किस तरह खाना है, इस पे पीछे भी बात हुई थी पहले पारे में। यहां आगे चलते हैं कि मिन तैयी बात ही मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुमको दी, ये है अल्लाह से मोहब्बत का अंदाज। कभी इस रिस्क को देख के सोचते हो कि हमने तुमको दिया? कौन सी भैंस, काली भैंस, गोबर में लिपटी हुई, गंदगी में बैठी हुई सफेद दूध दे सकती थी? सूरत आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, सूरत मोमिनून में भी आता है और गालिबन सूरह फुरकान में आता है आगे, या नाहलिनी सूरतों में 2 दफा कुरान में दूध का तذکرہ है। कि बताओ ये काली भैंस में से सफेद दूध कौन निकालता है? और फिर तुम उस दूध को किसी पीर की न्याज का डाल देते हो। अगर अल्लाह हुक्म दे दे तो एक गाय दूध का एक कतरा ना दे, एक बकरी गाय का दूध, बकरी दूध का कतरा ना दे। तो जब खाते हो तो उसको एहसास जिम्मेदारी से खाओ, जिसने तुमको दिया उसी के दिए को खाकर तुम उसी की नाफरमानी करते हो। इसीलिए फरमा दिया कि पाकीज़ा में से खाओ, अच्छी चीजें खाओ। ये तो एक एंगल है ना खाने का, फिर इसमें वो हलाल तैयब में सोर्स ऑफ इनकम भी हलाल हो, तुम्हारी कमाई चोरी की ना हो, डकैती की ना हो, लूट मार की ना हो, किसी का हक गसब ना करो, किसी और की जमीन पे तुम कब्जा ना कर लो, गंदी चीजें बेच के रिस्क ना कमाओ। आप देखिए तैयब की बात कर रहे हैं ना, मुझे किसी की बात याद आ गई, सिर्फ इशारतन, यहाँ मौजू शराब नहीं है, वो आगे जाके जहां आएगा वहां बात करेंगे। लेकिन आप देखिए कि अल्लाह ताला जो सोर्स ऑफ इनकम को भी हलाल कहते हैं ना, उसकी भी वजह समझिए। मिसाल देती हूँ कि शराब है, एक बंदे का सोर्स ऑफ इनकम शराब है। इस्लाम कहता है कि उस इनकम से खाना पीना हराम है, हलाल नहीं। इसको एक साइड पे कर दे, आप कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, ब्रेड तो ब्रेड ही होती है, असरात होते हैं। लेकिन आप सोचिए कि जिस बंदे ने शराब बेची, उसकी माँ उसको दुआ देती है, हर माँ दुआ देती है ना, अल्लाह मेरे बेटे को छप्पर फाड़ के रिस्क दे। अब एक माँ है, उसको पता है उसके बेटे का पब है, शराब खाना है, क्या कहेगी, अल्लाह मेरे बेटे के रिस्क उसको वसूल दे, यानी और शराब बिके। एक शराब की बोतल जो उसके बेटे के हाथों से बिकी, उसके वर्कर ने उसको पैक किया, थैली में डाला, थैली से घर गई, घर से किसी की फ्रिज में गई, वहां से किसी गंदे जहन वाले ने पिया, उस शराब को पी के उसने क्या किया, ये सारा उस बेटे के नाम पे गया। कुलू मिन तैयबाती, सीधी सी बात है, ये तो कोई दुआ भी नहीं दे सकता ऐसे रिश्तेदारों के, कि अल्लाह आपको दौलत दे, बरकत दे, क्या दे, खाक दे, कि आपकी वजह से जिना फैले, आपकी वजह से बदकारी फैले। एक हमारे अमेरिका में बहुत अच्छे स्पीकर हैं, रिजवान साले उनका नाम है, तो उनका मैंने बहुत पहले एक लेक्चर सुना था इसी शराब के मौजू पे, कि मेरे भाई सोचो जो बोतल तुम्हारे हाथ से बिकती है, और अमेरिका में तो अल्लाह माफ करे कि हर 10 में से एक मुसलमान का स्टोर होगा ये वाला कन्वीनियंट स्टोर जिसमें शराब है। अब तो हालात बदल गए होंगे, आई डोंट नो, जब मैं थी तो मैंने ये देखा था, तो वो यही उन्होंने कहा था कि सोचो कि ये बोतल तुम्हारे काउंटर से लेके आखिरी रिजल्ट कहाँ पहुंचता है, तो क्या तुम उस सारे में जिम्मेदार नहीं हो? अब इस्लाम क्या कहता है, ना गंदी चीज खाओ ना पियो। सिगरेट पीते हैं आप, क्या सिगरेट तैयब है? उसका धुआं जो अंदर जाता है, एक तस्वीर थी कहीं अगर आपको दिखा सके, कि एक वो शख्स है जिसका एक सेहतमंद फेफड़े हैं और एक सिगरेट वाले फेफड़े हैं, काले स्याह हो जाते हैं, बल्कि रमजान की आपको जो रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखाया था उसमें दिखाई थी, जाके आप वेबसाइट से दोबारा देख ले, काला हो जाता है अंदर से फेफड़े जिसके जो सिगरेट पीता है, हुक्का तम्बाकू
सिगरेट के पैक के ऊपर भी हार्ट बना
उसके
होता
ऊपर भी दिल बना होता है, ऊपर लिखा भी होता है
है।
तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुजर है, फिर भी पीते हैं। तो इस्लाम चाहता है कि साफ सुथरे रहो। देखिए हमें जो भी रिस्क अल्लाह ने दिया ना, इसलिए दिया कि हम खाएं और इबादत करें, अल्लाह को माने, अल्लाह से प्यार करें, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। जब खाने का तरीका खराब है, और इसका असर होगा, यकीन नहीं होगा, आज तो वेव्स का असर है, आप कहते हैं माइक्रोवेव ना यूज करें, इसकी वेव्स पड़ती हैं, वक्त के साथ साथ असरात देख रहे हैं ना, किस चीज से कैंसर पैदा होता है, किससे दूसरा होता है, तो क्या इन सारी चीजों का हमारे अखलाक पे असर नहीं होगा? आगे कुछ चीजों में प्रैक्टिकली बात भी सामने आ रही है, कहा कि अच्छा खाओ, साफ खाओ, फ्रेश खाओ, ताकि तुम्हारी इबादत में लज्जत आए, तुम्हें अल्लाह से बात करने में मजा आए, तुम्हारी सोच पाकीजा हो, और साथ ही साथ वशकुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, और उसका शुक्र करो, किसका, अल्लाह का, अगर हो तुम सिर्फ उसी की इबादत करते हुए। ये है इस्लाम का वो खूबसूरत नजरिया जो खाने पीने के बैलेंस को शो करता है। बहुत सारे लोगों के जहनों में सवालात होते हैं इस बारे में कि क्या इस्लाम अच्छा खाने से रोकता है? सवाल है ना, क्या अच्छे खाने ना खाएं फिर? क्या फिर सूखी रोटियां ही खाएं पानी में डुबो के? तो पहली बात है कि ये मुराद नहीं है, अल्लाह ने बनाया ना रिस्क। आप सोचे कि अगर अल्लाह ये सारी सब्जी, गाजर, आलू, मूली, चावल, रोटी, सालन बनाता और कहता खबरदार हाथ न लगाओ, खाओगे तो मारूंगा, कभी कोई माँ ऐसी है? सुबह से दोपहर तक खाना पका रही है और खाना पकाने के दौरान क्या कह दे, पक्के रखे तो बच्चों से क्या, खबरदार अगर तुमने हाथ लगाया, ठीक है दावत है, मेहमानों के लिए बनाया है, वो बच्चों को चैनलाइज कर सकती है कि अभी ना खाओ, ये ना खाओ, बाद में खाओ। लेकिन आप सब भी औरत होने के नाते इस बात को अच्छी तरह जानती होंगी कि जितना आपको अपने हाथ से किसी को खाना पका के खिला के मजा आता है, बाजार से खरीद के उतना नहीं आता। फितरतन मैं सोचती हूँ हमारे इंडो पाक के कल्चर के तो रगों में बसा हुआ है खाना खिलाना पिलाना, ये एक हमारी खूबी है मुसलमानों की कि मेहमान नवाजी बहुत है, गैरों को आप देखे वो पास ही अपना सैंडविच खोलेंगे खा लेंगे, किसी को पूछते भी नहीं साथ बैठे को, और हम मुसलमान तोड़ तोड़ के देते हैं आप भी ले लें आप भी ले लें, तो ये खूबसूरती होती है, अच्छी बात है। इस्लाम क्या चाहता है? इस्लाम कहता है कि खाओ, कुलू मिन तैयबाती वश्कुरू लिल्लाह, खूब अच्छा खाओ, खूब अच्छा ओढ़ो और खूब अच्छे काम करो। यहां आप शुक्र को समझेंगे, हर बंदे के शुक्र का लेवल फर्क होगा। पिछली आयतों के रब्त में ले लीजिए, तो मक्का वालों ने कुछ चीजें अपने ऊपर हराम की हुई थी, मतलब कुछ लोग थे वो गोश्त नहीं खाते थे, अब इस्लाम आ गया उनके अंदर, बचपन से बाप दादा के वक्त से उन्होंने गोश्त से रुकते हुए देखा, यानी खुद को वेजिटेरियन कहते थे, उसका शुक्र क्या, वश्कुरू लिल्लाह, के अब खाओ, जब अल्लाह ने कह दिया खाओ तो तुम बाप दादा का नाम लेके कराहत ना करो। जैसे आज की मिसाल देते हैं कि कोई शख्स है जो बचपन से गोश्त नहीं खा रहा, गाय का गोश्त नहीं खाते कुछ लोग, एक मजहब ऐसा है कि उनको अपनी गाय से मोहब्बत है, वो गोश्त नहीं खाते, नहीं खाया था बचपन से, अल्लाह ने इस्लाम दे दिया, दिल खुल गया तो कहा वश्कुरू लिल्लाह, अब खाओ, पहला दर्जा खाने का कि अब खाओ, ये ना कहो कि मेरे मुझे कराहत आती है, मुझे घिन आती है, पता नहीं गुनाह ही ना हो जाए, ये तो हमारी गौ है, ये माता है, ये नहीं करो, ये पहला दर्जा है, ये उसका दर्जा है, ठीक है। दूसरा दर्जा क्या होता है कि एक शख्स जो बचपन से खाता था, हम मुसलमान हैं हमने कभी नहीं सोचा कि गोश्त ना खाएं, ये अलग बात है कि नहीं खाए कोई गोश्त ना खाए, चिकन ना खाए, ये ना खाए, पसंद है क्या, वो अलग बात है, खाता था लेकिन खा के कभी सोचा ही नहीं कि किसने दिया, इसको खा के करना क्या। इधर वलीमे की दावत पूरी हुई, पेट बड़ी बड़ी तोंदे भरी और फिर महफिल मौसीकी सज गई, ये ना करो। जिस दिन खूब अच्छा खाते हो उस दिन काम खूब बुरे ना करो, कि आज हमारा ये मिजाज नहीं बन गया। रोज दाल सब्जी आलू सालन कुछ भी खा ले, वैसे तो सच्ची बता रही हूँ कि हम तो रोज ही अच्छा खाते हैं, हमें तब ये पता ही नहीं है कि अच्छा खाना क्या होता है, क्योंकि रोज अच्छा मिलता है। पहले एक दौर होता था किसी के घर दावत पे जाना हो, बचपन की बातें अपने, जाहिर है कि क्लास शोर में आपके भी कुछ ऐसी चीजें होंगी, तो शौक क्या होता था, एक तो शौक बचपन में हर जगह जाने का शौक, और दूसरा क्या होता था कि पुलाव होगा वहाँ, अक्सर पुलाव और आलू गोश्त चिकन का शोरबा हमारे ट्रेडिशन है ना, खुशी होती थी कि आज पुलाव होगा, मुर्गी पकेगी। घर में मेहमान आता था, बच्चे सबसे ज्यादा खुश इसलिए होते थे कि आज मुर्गी पकेगी, वो तो बेचारा एक दो बोटी खाएगा बाकी हमने खानी है, मियाँ सब भी बड़े खुश होते थे कि आज मेहमानों के तुफैल हमें भी मुर्गी मिल जाएगी। आज क्या हाल है देखिए, जरा एक छोटा सा काम दो, मैं देखिए मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ खाने पीने के, मुझे बहुत खुशी होती है आपको भी देखकर, हम भी सब खाते हैं, ये भी नहीं कि मैं नहीं खाती, हम सब खाते हैं, लेकिन सिर्फ मेरा काम है सोच बेदार करना। आज जाकर अपनी किचन, फ्रिज और फ्रीजर, पेंट्री, उसमें से आप कितनी किस्म की चिकन या गोश्त आपके घर में, उसकी लिस्ट बना के लाए। मेरे घर में मीट किस किस शक्ल में मौजूद है, वो टिन में भी आपको मिल जाएगा, वो टर्की सैंडविचेस की सूरत में भी मिल जाएगा, वो हॉट डॉग्स की सूरत में मिल जाएगा, वो नगेट्स की सूरत में मिल जाएगा, वो आपको कबाब पैटीज, और आपको बोनलेस और बोन और पूरी मुर्गी के टुकड़े कर करके हम अलग से अलग लाते हैं, और वो आपको, आप देखेंगे कि फ्रेश चिकन भी मिल जाएगी आपको उसके अंदर, क्या कहानियां मिल जाएंगी। क्या हमारे बच्चे इतने शुक्रगुजार हैं हमारे, सच बताएं। हम जितना बच्चों के नाम तो मैं एक इस्तेआरत नहीं लेती हूँ ना, हमारा अपना नफ्स भी तो बच्चा ही है, जितना अच्छा खाते हैं कि वश्कुरू लिल्ला है, एहसास ही खत्म हो गया। अब बच्चे क्यों नहीं दावतों में जाते कभी, आपने नोट किया, अक्सर घरों में झगड़ा पड़ जाता है जिस दिन फैमिली की दावत हो, माँ बेटी कहती है मैंने नहीं जाना, बेटे कहते हैं मैंने नहीं जाना, मियाँ साहब कहते हैं मैं पार्टी में, अखीर फिर रोज हो के मियाँ बीवी जा रहे होते हैं, बच्चों को ले भी जाए तो उनके मूड बने होते हैं, फिर भी उनको वापसी में मैकडोनल्ड ही खिलाना होता है। क्यों भला? इसलिए कि मिन्नतें करके तेरी तुझे बिगाड़ दिया, एक एक हफ्ते का फाका दे के देखे नफ सब ठीक हो जाएगा। आप आजमा के देखें, सिर्फ एक हफ्ता कहें कि मैंने नेचुरल फूड खाना है, ये नहीं कि मुर्गी अल्लाह ने नहीं पैदा की, गोश्त अल्लाह ने नहीं किया, खाओ सब बैलेंस के साथ खाओ, एक दिन सब्जी, एक दिन दाल, एक दिन गोश्त, चौथे दिन कुछ भी नहीं, सब बचा कुचा खाओ। यकीन करें अगर आप हफ्ते का सिर्फ एक दिन इस काम पे रख लें, वैसे तो आपके घरों में बचना ही नहीं चाहिए, जितना पकाते हैं उतना खत्म हो जाए। सबसे मुश्किल काम है जब खाना इतना सा बच जाए उसको संभालना का, अदरवाइज खाना नहीं बचता, मेरे घर में तो नहीं बचता अल्हम्दुलिल्लाह। और आज भी मैंने देखा है चार चीजें आ जाएं बाहर से, लेकिन मेरे हस्बैंड सबसे पहले वही खाते हैं जो मैंने घर में बनाया होता है, खत्म हो जाता है, फिर खुशी होती है अगली दफा नया, हम पहले उसको इधर, वो जैसे वो कहते हैं ना कि पीछे हमने पढ़ा था कि सुम युमी तो कुम युहरी कुम सुम युमी तो सुम लही, तो जो हम गोश्त के साथ ये करते हैं, पहले गर्म फिर ठंडा फिर फ्रीज करते हैं फिर पकाते हैं फिर फ्रीजर में डालते हैं फिर डिफ्रॉस्ट करते हैं, उसकी तो कितनी मौतें कितनी जिंदगियां हो गई। तो नेचुरल बी नेचुरल, मसाले इतने मर्चें इतनी कि मत मार देते हम गोश्त की, अगर मुर्गी जिंदा हो तो वो परेशान हो। वैसे मैं नमक ज्यादा डालती हूँ, अब तो मैं काफी कम हो गई हूँ, मुझे मेरा हाथ ही नहीं रुकता था, पाकिस्तान के नमक और अमेरिका के नमक में बड़ा फर्क है, तो जिस हिसाब से पाकिस्तान में डालते हैं तो अमेरिका में भी मैं जाके उसी सोच से डालती थी, वो खालस होता था, तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि तुम इतना नमक डालती हो कि अगर मछली जिंदा हो तो मर जाए इस नमक के साथ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफी हद कम कर दिया, नहीं डालती, लेकिन ये सच है कि हम दूसरी चीजें इतनी डाल देते हैं कि असल टेस्ट ही खत्म हो जाता है। मिर्चे कितनी डालते हैं आम के, असल खाने का टेस्ट खत्म होता है, बस मिर्चे मिर्चे कहते मजा आ रहा है ना, पता ही नहीं चला मुर्गी थी कि हलीम किस चीज की थी, दाल थी क्या थी, मिर्चे मिर्चे थी। हाँ? तो आप सोचे, मुझे अपनी साइंस की टीचर की बात याद आ रही है, ये बात कहते हुए कहती थी कि सोचो जब तुम मिर्चे खाते हो तो तुम्हारे होंठ और जुबान जलती है ना, हालांकि ये फिर भी निस्बतन सख्त अजाएं, तो सोचो कि एसोफेगस और आपके स्टमक की लेयर जो इतनी नाजुक है उस पर वो मिर्चे क्या करती होंगी। ठीक है, तो खाइए, हद में रह के खाइए और शुक्र करें, बंदा है मोमिन का खा के शुक्र करना क्या है कि जितना अच्छा खाए उतना अच्छा उसने नेकी का काम करे। फिर ये नहीं हो सकता कि हम दावतों और शादियों के बाद नाफरमानी के काम करें, फिर तो उस दिन हमारी अकड़ ही ना खत्म हो, और आज मामला बिल्कुल उलट है। जितने अच्छे खाते हैं उतना ही ज्यादा घूरते हैं, उतना ही अल्लाह की नाफरमानी मानते हैं। तो हर बंदे का शुक्र फर्क होगा। नहीं खाते थे तो खाना शुरू कर दो, कराहत आती थी तो कराहत खत्म कर दो, और उसके बाद देने वाले का शुक्र अदा करो, क्योंकि शुक्र के तीन दर्जे होते हैं, बिलकल्ब, शुक्र बिलकल्ब, थैंक्स टू बी फ्रॉम योर हार्ट, दिल का शुक्र के अल्लाह तूने दिया, कितना तेरा शुक्र है, तू ना देता तो कहाँ से खाते। दिल आपका हर वक्त अल्लाह की मोहब्बत के जज्बों से भरा हो। आज जब लंच के लिए बैठे हैं या डिनर के लिए रात को बैठे हैं, तो देखें बच्चों को एहसास दिलाएं, बेटा ये किसने दिया, ये कहाँ से आया। एक भैंस दूध देना छोड़ दे, आपका सारा चीज और आपकी सारी डेयरी फार्म खत्म हो जाए, बेकरी खत्म, मिठाई खत्म, दूध खत्म, आपकी मैं समझ लिए कि घर में जितनी सॉसेज हैं वो सारी खत्म हो जाए। एक भैंस अगर अल्लाह की नाफरमानी करे, हम नाफरमानियां करते हैं खा पी कर। तो बहरहाल दिल में शुक्रगुजारी, और जुबान पे दूसरी चीज, अल्लाह का शुक्र का दूसरा दर्जा के शुक्र बिल लिसान, जुबान पे रब के गुण गाओ, मेरा रब मुझे बड़ा अच्छा खिलाता है, मेरे रब ने बड़ा प्यारा खिलाया है, वो खिलाता है, वही खिलाता है, वही पिलाता है। अपने ना गुण गाते रहो कि मैंने बड़ा अच्छा बनाया, मेरे हाथ में बड़ा टेस्ट है। खाक टेस्ट है आपके हाथ में, अगर जरा सी कोई चीज ही अपना टेस्ट खत्म, इस दुनिया में सिर्फ चार चीजें अल्लाह ने हराम की हैं, आइए अब उसकी तफसील देखते हैं। बाकी जो कुछ है सब उसका बाय प्रोडक्ट है। और आप इस मिजाज को समझ गए तो आपको लगेगा इस्लाम इतना आसान मजहब है। क्या है? इन्नमा, बेशक सिवाय इसके नहीं, कुछ भी कह लीजिए, हर्रमा, उसने हराम किया। किसने? अल्लाह ताला ने। किस पे? अलैकुम, तुम पर। तुमसे मरा जहां कौन होगा? मैं और आप मुसलमान। यानी जो ही बंदा मुसलमान होता है उसका एक खाता नया खुल जाता है। पहली जिंदगी तो थी, वो तो थी ही थी, अल्लाह ताला ने कर दी, लेकिन अब क्या है तुम पर? हराम चीजों में पहली चीज क्या है? अलमैता। लफ्ज देखिएगा, अलमैता, लफ्ज मैयत बोलते हैं उर्दू में, मुर्दा। अलमैता शरीयत में उस जानवर को कहते हैं जिसको जिबा करने से पहले ही मौत आ जाए। निकले, मैं आपको आज यहाँ वो मौजू समझा दूं जो अमेरिका कनाडा में तो फेवरेट टॉपिक है लोगों का। यूरोप में मैंने लोगों को इतना क्यूरियस नहीं देखा इससे, अल्हम्दुलिल्लाह। समझ लीजिए इसको, इस्लाम ने क्या मिजाज किया? जितने जानवर हैं दुनिया में फिर रहे हैं, खा पी सकते, कुछ हराम है उसके लिए आएगी बाद में। गाय, भैंस, बकरी, ऊंट और मुर्गी, जो कुछ भी आम चीजें आप खाते हैं खा सकते हो, लेकिन इनको खाने का एक खास तरीका है। दो शर्तें हैं इस्लाम में खाना, यदि चिकन को मिसाल लेते हैं, चिकन आप खा सकते हैं लेकिन उसको खाने की दो शर्तें हैं। पहली शर्त है कि जब चिकन को पकड़ा जाए यानी जिबा करने के लिए, तो उसको जब छुरी चलाई जाएगी उसकी गर्दन पे, तो बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर कहा जाएगा। क्या कहेंगे बोलिए आप लोग? मैंने अपने एक छोटे से सेशन में इस पे बात की थी कि आपकी आपका पेन हो तो मैं यूज करना चाहती हूँ, मैं क्या कहती हूँ, मैं टेक दिस स्लिप, इजाजत लूंगी ना आपसे, आपका पानी पड़ा हुआ मैं पीना चाहती हूँ, मैं कहूंगी क्या मैं आपका पानी ले लूँ? जिस तरह हम इंसानों से उनकी चीजें लेने से पहले इजाजत मांगते हैं ना, जानवर, बकरियां, गाय, भैंसे, मुर्गियां किसकी हैं? अल्लाह से हम लेना चाहते हैं तो कहते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह जी आप बहुत बड़े हैं, आप सबसे बड़े हैं, क्या मैं इस मुर्गी को ले लूं? समझ आई बात? बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहना असल में अल्लाह ताला से इजाजत लेना है, इसके पीछे विस्डम है। आप कह रहे इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, बड़ी ना समझी और गुस्ताखी होगी कि इंसानों से तो हम कुछ लें तो मैं प्लीज एक्सक्यूज मी पार्डन प्लीज और फला फला, और अल्लाह के जानवर पकड़े और झट से छुरी डाल दें। पहली वजह सबको समझ आ गई, कोई शुबा कोई सवाल, क्लियर? चलिए दूसरी शर्त क्या है कि जानवर को जब जिहा किया जाता है ना, आप भी मेरे हाथ को देखें, जैसे ये देखें हमारी गर्दन है ना, इस गर्दन के अंदर बहुत सारी वेन्स गुजर रही हैं, आंखों कान इनके सारे जिस्म के साथ ये कंट्रोल होता है। इसके अंदर एक रग ऐसी होती है यहाँ पे जहां आप देखें कि जिसको रोगे जिंदगी कहते हैं, हाँ वरीद कहते हैं,
शहरत कहते हैं, ठीक है। जब ये कटती है ना तो फिर क्या होता है कि बंदे का दिमाग के साथ ताल्लुक टूट जाता है। जानवर के जिस्म के अंदर, गर्दन के अंदर बहुत सारी रगें होती हैं, लेकिन एक रग ऐसी होती है कि जब उसको कट लगा दे तो जानवर तड़पता है। तड़पने की वजह से उसके जिस्म के अंदर जितना भी खून होता है ना, खून क्या उसके ऊपर आगे लग बात आ रही है उसको वहां देखेंगे तो तब इतना समझ लेंगे कि खून हमारे जिस्म में ऐसी है जैसे गटर की पाइपों में गंदा पानी। सारे शहर की सफाई करते हैं ना, गटर का पानी उसमें आता है और आप उसको भगा देते हैं, रह जाता है तो साफ हो जाती है गलियां। बिल्कुल इसी तरह हमारे जिस्म में हर वक्त मसल सेल्स टूटते हैं, सेल्स बनते हैं, कभी जख्म आता है, पस बनती है, हम खाना खाते हैं उसके अंदर जरासीम चले जाते हैं, वो सब कुछ जिस्म हमारा जो है वो खून में डाल देता है। खून सारा दिन जिस्म में यूं फिरता है, ये सफाई कर रहा है, जहां को गंदी चीज लेते हैं उसको उठा लेता उठा लेता उठाता है। ये तो हम औरतों में पीरियड्स होते हैं ना बलूगत के बाद, ये भी असल में यही चीज है। जिस्म के अंदर पूरे महीने में इतनी ज्यादा चीजें जमा हो चुकी होती है, इतने पिगमेंट और गंदगी, कि अल्लाह ने एक नेचुरल सिलसिला बना दिया कि वो जिस्म से निकल जाता है तो औरतों का जिस्म नरम रहता है। मर्दों में चूंकि ये सिलसिला नहीं होता तो वही फिर जिस्म की जो गंदगी है उनकी मजबूती का सरिया बनती है। मर्द मजबूत होता है, जिस्म पे बाल आ जाते हैं, आवाज भारी होती है, उनके अंदर हमसे ज्यादा वजन उठाने की ताकत होती है। तो जिस्म के अंदर जो खून है ना वो गंदगी का कैरियर है। अब होता क्या है कि जब आप जानवर को जिबा करते हैं, एक तरीका के पूरी गर्दन इकट्ठी काट दें, जिसको आज के दौर में बड़ा मारूफ लफ्ज बोलते हैं झटका, कोई भी पकड़े और जिसको आप कह लें कि मर्सी किलिंग या कुछ भी करते, होगा क्या कि जानवर के जिस्म में जो खून है ना वो वहीं रुक जाएगा, ठीक है। गर्दन अलग हो गई, जिस्म अलग हो गया, जानवर थोड़ी देर में ठंडा होगा। जितना खून जिस्म में था उसके अंदर जितने जरासीम थे सब गोश्त में मिक्सअप हो जाएंगे। बात वैसे अब इस बात को सुन के आप जो मर्जी कहें कि हम चिकन कैंटकी खा लें, हम फुलां का चिकन खाएं, हमें तो उसकी खुशबू बड़ी अच्छी, जो मर्जी करें, आपकी मर्जी, आप जाने, आपका काम जाने, हमारी बिना से। लेकिन अल्लाह ने बता दिया, उसको पता है जिसने बनाया है, कि जानवर को एकदम ना काटो। बल्कि क्या होता है उसकी ये गर्दन की सिर्फ एक कट लगाते हैं, खास कट होती है, काटने वालों को पता होता है, वो काटते हैं ना फिर जानवर को छोड़ते हैं। अब उससे कहते हैं कि दिमाग उसका काम कर रहा है, लेकिन जानवर मरा नहीं है पूरा, लेकिन उसके अंदर फीलिंग क्या आ रही होती है, जब वो तड़पना शुरू होता है, जब वो तड़पता है ना तो उस रक्त के जरिए सारे जिस्म का खून बाहर निकल जाता है और वो गंदा भारी खून पहले निकल जाता है। जो ही वो निकला, जानवर अंदर से एक किस्म का क्लीन हुआ, तो फिर आप उसको पूरा काट देते हैं तो वो गंदा आ जाता है। ये है दूसरी शर्त। पहली शर्त बिस्मिल्लाही अल्लाह अकबर, ये क्या है, अल्लाह से परमिशन लेना। दूसरी क्या है, जानवर के जिस्म का गंदा खून निकालना है। जब ये निकल गया वो बिल्कुल ऐसे प्योर और क्लीन गोश्त है। आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरत अल-अनाम में आएगा, दमम मस्फूहा का भी लफ्ज आता है, रगों में बहता हुआ खून हराम है, क्योंकि उसमें गंदगी होती है। बाद दफा देखिए कि गोश्त धो के आप रखते हैं, उसके बाद थोड़ी देर फिर खून आ जाता है, ठीक है, तो वो पाक है क्योंकि उसमें गंदगी नहीं है। गंदा खून निकलना है, वो गंदा खून हराम है। इसलिए फरमाए कि अल मैदा, खुद से जानवर मरेगा तो उसका गंदा खून जिसम नहीं रहेगा, जिबा नहीं किया, ये नहीं खा सकते जो खुद से कर। अब इस मैदा की सारी डिटेल देना, ये सूरत मैदा की शुरू की आयतों में हम पढ़ लेंगे, अल मैदा अल मुनखनिक अल मौकूज अल मुतरद्दी अल नतीहत वमा अकल सदु, क्योंकि जानवर के खुद ब खुद मरने की कई सूरतें हो सकती है ना, बुलंदी से गिरा मर गया, लाठी लगी मर गया, जानवर ने सींग मारा तो मर गया, शॉट लगा तो मर गया, तो वो जानवर जिनमें से किसी सूरत में मर गया बीमारी में किसी तरह, वो नहीं खा सकते, पॉइजनस होता है उसका मीट। अब आज लोग कहते हैं क्या चिकन ही है ना, अमेरिका में एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, क्या हम रेगुलर स्टोर्स का मीट खा सकते हैं, ये ऐसे जैसे आज जहां रहते हुए कोई के सेंस फ्री और टेस्टो और गुलाम में जो मीट बिकता हम खा सकते हैं, तो आपको जवाब मिल गया, खाना चाहते हैं तो खा लें गंदा खून। आप देख सकते हैं कि आज वेस्टर्न माहौल में कितनी बीमारियां, हमारे मुल्क गरीब ही सही लेकिन इतनी बीमारियां नहीं है जो यहाँ है, अंदर जरासीम की बीमारियां, किसी के एंजाइम की बीमारियां, स्किन की बीमारियां, खाल लटकी हुई, मोटापा, वो इस तरह के पीट की वजह से होती है। तो लिहाजा अल्लाह ताला कहते हैं कि मैदा ना खाओ, खुद से मरा हुआ को ना खाओ। आप बस अभी इसी पे रहे, आपको इतनी बात समझ आ गई है ना, आगे चलते हैं। और वजह आपको बता दी गई कि ये इसकी वजह है, دوسری چیز جو نہیں کھا سکتے وہ کیا ہے؟ اچھا میں ساتھ ساتھ آپ سے بھی تو پوچھ لیجا کہ کیا اسٹل آپ کو لگتا ہے کہ میدا کھانا چاہیے؟ کوئی دوسرا دوسرے میٹ نہیں ملتا، نہ بھی ملے تو کیا انسان اتنی گندی چیز کھا سکتا ہے؟ تو مشکل تو نہیں ہے نا اسے رکنا، ٹھیک ہے نا؟ آپ حلال طریقے سے کٹا ہوا لے لیتے ہیں. دوسری چیز ود دم، خون. خون نہیں پی سکتے آپ کسی کا. آپ نے بھی سن لی، کیوں بولا کہیں گے تو خون پیتا؟ پہلے تو مائیں پیتی ہیں، غصے میں کہتی میں تمہارا خون پی جاؤں گی. آپ بتائیے ذرا، یہ حد سے بڑی بھی بات نہیں ہے؟ قتل کر دوں گی تمہیں، ذبح کر دوں گی تمہیں. بچے کو بھی پتہ کرنا کوئی نہیں، اس عورت نے کتنے سال سے کہہ رہی ہے. مت بولے وہ باتیں مجھ سے جو کر نہیں سکتے. لیں میں تو خون لوں گا، مالا تب کرو، ٹھیک ہے؟ کئی کلچر ایسے جہاں خون پیا جاتا ہے، واللہ نہیں پی سکتے، خون حرام ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے ایکسپشنز دو ہیں، وہ میں آپ کو بعد میں لکھاؤں گی تاکہ آپ کا مائنڈ افیکٹ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ پہلی، اب کسی کا خون پینے کا موڈ تو نہیں ہے نا، ضرورت بھی نہیں ہے نا، تو ختم ہو گئی. یہ چیز ایسی ہے ہی نہیں جو ہم پسند کریں. انسان کی طبیعت ہی نہیں جاتی کہ وہ خون پیے، تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، آگے چلیے، وہ نکل گیا. تیسری چیز وہ لحم الخنزیر، سور کا گوشت نہیں کھا سکتے. لحم کہتے ہیں عربی میں گوشت کو، ملحوم کہتے ہیں گوشت کی دکان، بٹر شاپ. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ عرب ملکوں میں لے جائے تو آپ دیکھیں گے کہ لکھا ہوگا جگہ جگہ ملحوم، لحم سے گوشت کی دکان. تو گویا کہ خنزیر، خا نون زا رو اس کا روٹ ہوگا، خنزیر کا گوشت بھی نہیں کھا سکتے. کیوں نہیں کھا سکتے بھائی؟ پہلی بات اللہ کا حکم، سیدھی سی بات ہے، میری چیز ہے. آپ کہتے ہیں آپ میں لے لوں، مطلب کیوں نہیں لے سکتے؟ دیٹس اٹ. ہمارے لیے کسی چیز، یہ جتنی باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں نا کہ خون ہے اور اس کیسے ذبح کرے، یہ صرف ہم انسان کی عقل کو تسلی دینے کے لیے بات کرتے ہیں. ہم نے اس لیے نہیں اس کو چھوڑنا کہ یہ اس لیے یہ زہریلا ہے. ہم نے کیا سوچ کے چھوڑنا ہے میتا کو؟ اللہ کا حکم، پھر میرا رب نہیں چاہتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے، مثال اچھی نہیں لیکن سمجھا دیتی ہوں، کہ جیسے آپ دیکھیں کہ شوہر اور بیوی کے تعلق کو اللہ نے ماں اور بیٹے میں حرام کیا نا، کیوں نہیں؟ اللہ کا حکم، دیٹس اٹ. بھائی بہن میں وہ تعلق کیوں نہیں ہو سکتا جو شوہر بہن میں ہے، شوہر اور بیوی کا؟ اللہ کا حکم. تو مسلمان ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ کہ ہم نے دین کا کوئی حکم بھی ماننا ہے اس کو اللہ کا حکم ماننا ہے، اس کو عقل بھی نہیں پرکھنا. کل عقل کہتے ہیں نہیں نہیں خون پاک ہوتا ہے، خون اب صاف ہو گیا، اب یہ کر لو تو اب ایسی چیز نکل آئی ہے کہ خون صاف رہتے تو کھا لو، پھر بھی نہیں کھانا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ بات ہو رہی ہے خنزیر سے. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ خنزیر بھی اللہ نے پیدا کیا اور اسی نے منع کیا. وہ جس کو چاہے حلال کرتے، جس کو چاہے حرام کرے، اس کی مرضی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک سنت یاد رکھے کہ اس نے اللہ ٹف ہمیں کسی چیز سے ایسے نہیں کہہ دیا نہیں کرنا، بس میں نے کہہ دیا تو بات مار کے بس میں نے آئی ٹول دیو، نہیں نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ دلیل بھی دیتا ہے. خنزیر جانوروں میں ایک عجیب سا جانور ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے تفصیل سے بات کی کہ کھانے پینے کا انسان کی طبیعت پہ اثر ہوتا ہے. ہم جو چیز کھاتے ہیں نا اس کا مزاج ہمارے اندر آ جاتا ہے. خنزیر جانور کے اندر طبی طور پہ، اخلاقی طور پہ اور سیکشولی طور پہ ایسی ایسی عادات ہیں کہ جو لوگ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں نا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں. مثلاً کیسے؟ چند باتیں، میں زیادہ نہیں بولتی اس پہ، اس لیے کہ مجھے تو اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. لیکن پھر بھی ہم سب کی تسلی ہونے کے لیے آپ دیکھیے کہ آج جا کے میڈیکل کی روشنی میں آپ جا کے خنزیر کے ان سائڈ کو اگر دیکھیں نا، تو حیرت ہوگی کہ انٹرنلی جو ہیومن باڈی کا اندر انٹرنل ہے نا، دل کہاں، پھپھڑے کدھر، بالکل خنزیر کا بھی ویسا ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب ہم خنزیر کا گوشت کھائیں گے، پک کا گوشت کھائیں گے، تو اگر خدا نہ خواستہ اس پیٹ کو دل کی کوئی بیماری تھی، ڈائریکٹ وہ بیماری ہمارے دل پہ آ جائے گی. اگر اس کے گردوں میں کوئی بیماری تھی تو اس کے گردے آئیں گے. یعنی چونکہ انسائٹ بہت زیادہ آپس میں ملتی جلتی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ اس کا معاملہ بالکل ہمارے اندر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات، فزیکلی اس کو کھانا کھانے کی وجہ یہ کہ خنزیر کی جو اسکن ہوتی ہے نا، اس میں پورس نہیں ہوتے، 6 inch، بلکہ ایک بار جگہ کہتے ہیں کہ 6 to 7 inch اس کی اسکن موٹی ہوتی ہے. آپ سوچتے 6 inch، جب اتنی موٹی کھال ہوگی تو جسم میں سے جو گندی فاسد مادے نکلنے ہیں پسینے کی صورت میں، وہ نہیں نکلتے، ریزہ کہتا ہے کہ اس کے جسم کی گندگی جو ہے اس کے اندر ہی ملتی جاتی ہے, کل اس میں سو جاتا ہے اس کا میٹ. پھر آپ دیکھیے کہ اس کی اتنی موٹی چربی ہوتی ہے, لارڈ کہتے ہیں اس کی چربی کو, فیٹ. پھر فیٹ جو ہوتی ہے وہ انسان کے پھیپھڑے اور اس کے دل, اس کے اندر کولیسٹرول کہہ لے کے دل میں کولیسٹرول بھر دیتی ہے. جو لوگ ٹکا گوشت کھاتے ہیں وہ آپ دیکھیں کہ ایکسٹرا آرڈنری موٹے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اس کے جسم کے اندر کچھ اس قسم کے سخت قسم کے انزائم ہوتے ہیں کہ جو انسانی باڈی ڈیزالو بھی نہیں کر سکتی. اس کا گوشت سخت ہوتا ہے, بدبودار ہوتا ہے, اسمیلی ہوتا ہے. اس کی اسمیل دور کرنے کے لیے اس کو وہ کچھ کیمیکل سے گزارتے ہیں, پھر صاف ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگر ہیبٹس کے ناطے سے دیکھیں, یہ تو ہے نا فزیکل ایفیکٹ, ہیبٹ کے اعتبار سے دیکھیں تو پگ جو ہے نا یہ گندا جانور ہے, گندگی میں رہتا ہے, کیچڑ میں لوٹ پوٹ کر ہوتا ہے, اپنا ہی کھجلا کھا جاتا ہے, جسم سے جو گندگی نکلتی ہے دوسرے جانوروں کا بھی گندگی کھاتا ہے تو وہ ساری اس کے اندر جاتی ہے. اس کے بلڈ میں یوریک ایسڈ جو ہے وہ نہیں ہوتا کیونکہ اس کی گندگی ساری جسم میں رہتی ہے. سیکچولی دیکھیں تو پگ ہومو سیکچوئل ہے, یہ بہت وہ جانور ہے جو میل میل سے اور فیمیل فیمیل سے گندگی کرتے ہیں. میل جو ہے نا اس کے اندر غیرت نہیں ہوتی, یہ اپنی فیمیل سے دوسرے پگس کے ساتھ جمع کرواتا ہے. یہ وہ مالک اچھے کائنات والا میں کہہ رہا جس نے بنایا. آج جب لوگ اس کے گوشت میں آئے اس سے آپ دیکھ لیجئے جو یہ کھائیں گے ان کے اندر آپ کو ہوموسیکسولیٹی, لیسبینز اور فلانا اور فلانا اب کلچر کے نام پہ دکھنے لگ گیا. پہلے تو یہ برائیاں لگتی تھی. جو آپ کے پیٹ میں جائے گا وہی آپ کے باہر آئے گا. کہتے ہیں عالم سے کہتے تھے تم مجھے بتاؤ کہ تم کیا کھاتے ہو تو میں تمہیں بتاؤں گا تم کرتے کیا. اچھی جو بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو منع, اور اس سے بہت کچھ آپ اس کی میں نے پچھلے سالوں میں بہت ڈیٹیل بتائی تھی, اگر آپ سننا چاہیں تو سن لیں. تو پگ کا گوشت اللہ نے حرام کر دیا. ہائی کولیسٹرول, ہیوی میٹ ہوتا ہے اس کے اندر, اور جو حرام ہے یہاں لحم الخنزیر ہے تو ہر چیز حرام ہے, اس کی چربی, اس کے کھور, اس کے کچھ. ایک چیز جو ریسنٹلی مجھے بتائی گئی, ہوپفلی دل تو مانتا ہے کہ ٹھیک ہی ہوگی, ہماری چیزیں جو عموماً لیدر کی, آپ دیکھیں کہ جتنی مہنگی چیزیں ہوتی ہیں موسٹلی لیدر کی ہوتی ہیں. تو میرے پاس ایک سیل فون کور تھا, میں نے کبھی سچی بات نہ سوچا نہ میں نے جن سے لیا ان کو بھی نہیں پتا ہوگا. تو میرے ہاتھ میں کسی نے دیکھ کے تو اس کو جب کھول تو انہوں نے بتایا کہ اس کی جو اندر کی لیئر ہے نا یہ پگ کی اسکن ہے. تو میں نے کہا وہ کیسے, تو پھر انہوں نے جس ریفرنس سے بات کی تھی وہ یہی تھی کہ جو مطلب ان کا کام ہی لیدر کی جیکٹ کرتی, جو لیدر ہوتی ہے نا اس کی پہچان کے کہ اس کے اندر سوراخ ہوتے ہیں, اس کے بال موٹے موٹے ہوتے ہیں, تو جب وہ اسکن صاف کر کے بال کھینچتے ہیں نا تو اس کی اسکن کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے. تو پھر میں نے جب اس بات پہ غور کر کے دیکھا تو واقعی دیکھا کہ باہر کا لیدر ایسے ہی تو نارمل جیسے ہوتا ہے لیکن اندر کی لیئر ہے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پگ کا لیدر سب سے سستا ہے. تو یہ جو جوتے بنانے والے, پرسز بنانے والے, بالکل. اور اس لیے میں آپ سب کو یہ ذکر اس لیے میں نے کر دیا کہ آپ لوگ بھی کیئرفل رکھ لیں. ادھر بھی کسی نے ایک دن اشارہ کیا تھا کہ جو ساتھی باہر آتے ہیں تو ان کی ایک کسی کی جوتی, جس کو پھر شوق ہوتا ہے وہ دیکھتا بھی ہے کہ ایسا نہ ہو, تو انہوں نے بتایا کہ کسی کی جوتی جو تھی تو اس کے اوپر جو اسکرین تھی وہ دیکھتی تھی. تو میں نے تو پھر وہ اپنا دیکھ دیا کیونکہ ہمیں نہیں پتا تھا نا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اب آپ کو پتا چل سکتی ہیں. اس لیے کبھی بھی پیور لیدر کی کوئی چیز لے, مہنگے جوتے, اور جتنی مہنگی دکانوں سے لیتے ہیں اتنی زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس کا, تو ان سے پوچھ لیں کہ پگ کا لیدر تو نہیں, اور خود اگر آپ دیکھنا چاہیں تو. بہرحال یہ ایک چیز میرے پاس تھی جو میں نے آپ کو بتا دی ہے. جی آپ چیک کر لیں بس. اب ہم کسی ایک برانڈ کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کیا ہے, نہ ہمارا کسی کو کوئی لیٹ ڈاؤن کرنا مقصد ہے, لیکن کم از کم آپ کو تھا کہ نماز ہی نہیں ہوگی. اصل بات تو یہ ہے کہ ہم عبادات اپنی خراب کرنے والے بنتے ہیں, تو ایسی ساری چیزیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے. اب اس میں ہر چیز پھر اس کی حرام ہوگی جو بھی چیز ہے. بہرحال آگے چلتے. پھر اس کے بعد چوتھی چیز یہ ہے جو آپ کو اب سمجھنی ہے ٹیکس کے ناطے میں. تین چیزوں پہ کوئی اعتراض ہے کسی کو؟ اگر اعتراض ہے تو اللہ سے دعا کریں کہ آپ کا اعتراض دور ہو, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اللہ ہی دور کر سکتا ہے, ہم نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ ہمیں فلان مجھے ان کا فوڈ اچھا لگتا ہے, کیونکہ اب پھر کی بات ہے کہ آج ہم مسلمان ٹکا گوشت الحمدللہ نہیں کھاتے, لیکن میٹ کھا لیتے ہیں, چکن کھا لیتے ہیں. کوئی ایسے لوگ ہیں جو شراب تو نہیں بیچتے, اپنے دوست پہ پک کے سینڈوچ بیچ لیتے ہیں, ان کی ریلیز میں یہ وہ ملتا ہے. تو پھر آپ کی مرضی ہے, پھر کو لینے کی ضرورت ہے. اللہ راضی کا وہ رسک دے سکتا ہے. اب چوتھی چیزیں یہ تھوڑی سی آپ کے سمجھنے کی, اس لیے اس کے اوپر آج کے لفظوں پہ غور کیجیے گا. چوتھی چیز جو حرام ہے, وما اوہلا, اور جو کوئی پکارا گیا بھی اس پر, لی غیر اللہ, اللہ کے سوا کسی اور کا نام. اس لفظ کو میں دو تین مختلف طرح سے پڑھ کے آپ کو دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو اس کا سارے اینگل سمجھ آ جائیں. اگر ایک ترجمہ اس کا کریں تو کیا ہوگا, اور وہ جانور جس کو اللہ کے نام کے سوا حلال کیا جائے. وہ حلال کا لفظ ہے نا, آپ یہاں دیکھ رہے ہیں, حلال کرنا پکارنا, یہ وہ حلال نہیں, ہا والا حل یا حلو اصل میں لفظ کیا ہوتا ہے, پکارنا. یہ جو چاند ہوتا ہے نا, پہلی دوسری تاریخوں کے چاند کو حلال کہتے ہیں عربی میں, وہی لفظ ہے. آگے بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ, کیونکہ چاند دیکھ کے لوگ پکارنے لگتے ہیں, وہ چاند دکھ گیا چاند دکھ گیا, ٹھیک ہے. تو اس میں لفظ اصل میں پکارنا ہے. ایک اس کا معنی کیا بنتا ہے کہ جس کو اللہ کے نام کے سوا پکارا جائے, تو معنی کیا بنے گا کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر نہ کہا جائے. یعنی کچھ بھی نہیں نام لیا, کسی کا بھی نہیں لیا, ایک اس کا ترجمہ یہ بنے گا. دوسرا کہ اور جس کو پکارا جائے لی غیر اللہ, اللہ کے سوا کسی اور کے نام کے لیے. بات بات ہے, اس کی مختلف فارمز ہوتی ہیں. ہوتا کیا تھا کہ عرب لوگ جب جانوروں کو ذبح کرتے تھے نا, تو بسم اللہ ہی کہنے کی بجائے اپنے بتوں کا نام لیتے تھے. جو بتوں کے پجاری تھے وہ بتوں کا نام لیتے تھے, اور جو کسی بزرگ یا کسی بڑے کو خوش کرنا چاہتے تھے وہ اس کے نام پہ. جیسے مثال ہے فلاں پیر کے نام پہ, فلاں غوث کے نام پہ, کتب کے نام پہ, یعنی اللہ کی بجائے وہ کسی بت کی خوشی کے لیے اس کو ذبح کرتے تھے. اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ نام لیا جائے. وہ کیا کرتے تھے کہ جن جانوروں کو اس طرح انہوں نے ذبح کرنا ہوتا, ان کو بتوں کی قبروں, بتوں کی درگاہوں پہ لے جاتے, بزرگوں کی قبروں پہ لے جاتے, اور وہاں جا کے ان کی قبروں پہ ذبح کرتے, اور کہتے کہ ہم نے اس صاحب قبر کی خوشی کے لیے یہ کیا, ہم نے اپنے صاحب قبر کی خوشی کے لیے یہ کیا. تو اس کو اللہ کہتا ہے وما اوہل بھی لغیر اللہ. اس کو آپ اپنی آسان زبان میں سمجھے تو ایسے ہی ہے کہ یہ فون ہے میرا اور آپ اجازت ان سے لے رہے ہیں, شمائلہ میں یہ فون ان کا یوز کر لوں. تو شمائلہ اگر آپ کو اجازت دے بھی دیتی ہیں تو میں نے تو نہیں دی. بات بات ہے, چیز اللہ کی ہے, آپ کسی دوسرے بندے کے نام پہ اس کی خوشی کے لیے کرے. اسی سے وہ شرک کے سارے باب آپ کو سمجھ آ جائیں گے. کہ آج غیروں کو تو چھوڑ دیجئے, ہم مسلمانوں میں بھی ماروں کا بکرا چھترا قبروں پہ لے جانا, وہاں ذبح کرنا, محرم میں فلاں امام کے نام پہ سبیل لگانا, فلاں کے لیے لے کے جانا, فلاں کے لیے کرنا, اسلام اس کو جائز نہیں قرار دیتا. وجہ کیا ہے؟ دیکھیے تقرب کا لفظ سنا ہوگا آپ نے, قربت, قربانی. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ بندہ مومن کے ہر کام میں تقرب اللہ ہو, اللہ کا قرب حاصل ہو. جب بندہ کسی چیز کے ذریعے کسی دوسرے کا قرب حاصل کرے تو شرک ہے, میکنگ پارٹنرز ہیں, ایسوسیٹ بنانا ہے, اللہ یہ پسند نہیں کرتا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے جو فوت ہو گئے, ماں باپ یا بزرگ, کیا ہم ان کی طرف سے صدقہ نہیں کر سکتے؟ کیونکہ بان سے بری فرق ہے شرک اور توحید میں. لوگ کہتے ہیں نا زمین آسمان کا فرق ہے توحید اور شرک میں, بال برابر فرق ہے. شیطان اتنے خفیہ رستوں سے شرک کرواتا ہے کہ اللہ کی پناہ. اللہ کے نبی کا ایک واقعہ آپ کو سنا دیتی ہوں کہ ایک شخص آپ کے پاس آئے, پہلے مسلمان ہو چکے تھے, پہلے کفر پہ تھے, کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے جاہلیت کے دنوں میں ایک منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام اگر ہو گیا تو بوانا, ایک وادی کا نام ہے یعنی زویلی اراؤنڈ مکہ, کہ وہاں جا کر ایک اونٹ کو ذبح کروں گا. پھر میرا اللہ نے وہ کام کر دیا تو میں نے وہ اپنی منت پوری نہیں کی, تو کیا آپ میں اس وادی میں جا کر اپنا اونٹ ذبح کر دوں؟ اب یہ اس کا سوال سمجھ گئے, یہ سوال ہے کہ بس کہیں دور جا کے ذبح کروں. جیسے لندن میں اور کوئی کہہ دے میں منت مانتا ہوں کہ میں مانچسٹر میں جا کر ایک اونٹ ذبح کروں گا, ایسی اب کہتے ہیں نا کہ جب لوگ مشکل میں پھنسے ہوتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ مشکل کام کرے تاکہ شاید اللہ تعالیٰ مان جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا پوچھا یہ بتاؤ کہ تم نے بوانا ہی وادی کیوں کہا؟ کیسے اللہ کے نبی دکھی تھا پریشان تھا, میں نے کہا چلو دور جا کے کرتے ہیں. اچھا پھر آپ نے پوچھا یہ بتاؤ کہ کیا وہاں کوئی قبر جس کی قربت کی وجہ سے؟ کہا نہیں اللہ کے نبی کوئی قبر نہیں ہے. اچھا یہ بتاؤ کیا کوئی وہاں درخت ہے جس کو معتبر سمجھتے ہوئے لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں؟ نہیں. آپ نے لمبے چوڑے سوال کی کیا وہاں کوئی کنواں ہے؟ یعنی جو چیزیں عموماً شرک کے آثار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بجائے دوسروں کو پوچھتا ہے. جب اس صحابی نے پورا یقین دلایا کہ اللہ کے نبی ایسی کوئی بات نہیں جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ وہاں جا کے منت مانوں گا, تو پھر آپ نے کہا کہ جاؤ پھر اپنی منت کو پورا کرو. تو یہاں سب سمجھیے کہ اگر آپ نے کسی بزرگ کو فائدہ دینا ہے, مثال ہے لوگ یہ دھوکہ دیتے ہیں کہتے نہیں نہیں ہم ان بزرگوں کی طرف سے صدقہ دیتے ہیں, تو جانور کو اگر ذبح کرنا ہے تو گھر بیٹھ کے کر دیں, کسی کے بھی نام پہ کر دیں. جیسے بھی دیکھیں کہ عید الاضحیٰ گزری نا, قربانیوں کا موسم تھا, آپ کا دل چاہتے کہ آپ اپنے ماں باپ کی طرف سے قربانی کریں, آپ نے کر دی, کسی کی طرف سے کر سکتے ہیں, زندہ مردہ یہ ایسی ہی کہ جیسے اب ہم یہاں بیٹھ کے ایک دوسرے کھانا کھلتا ہے تو ہم ایک دوسرے کے لیے کھانا نہیں لیتے, خوشی ہے نا, آپ کو میں نے کھلا دیا آپ نے مجھے کھلا دیا, یہ کھانے کی بات ہوگی نا. اسی طرح جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم کوئی نیکی جو زندگی میں اس کے ساتھ کرتے تو اس کے بعد کر سکتے ہیں. میں آپ کی طرح آپ کسی کو کچھ دیتے, میں کہتی نہیں میں دے دیتی ہوں, میں نے آپ کی طرف سے پیسے دے دیے, صدقہ ہو گیا نا. تو جب کوئی مر جاتا ہے مرنے والے کی طرف سے صدقہ دے سکتے ہیں. آپ اپنے چچا خالو پھوپھا ماموں جو فوت ہو چکے ہیں ماں باپ, ان کی طرف سے جتنے مرضی صدقے دیں, آپ کھانا کھلاتے ہیں, آپ کسی کی طرف سے کھلا دیں کہ اس کو ثواب ہو. فرق کتنا ہے, ایک کسی کی طرف سے کھلانا کہ اس کو ثواب ہو, اور ایک کسی کو خوش کرنا کہ یہ بابا جی خوش ہو جائے تاکہ میرا بنا بگڑا ہوا کام رک جائے, یہ شرک ہے. بات خاص تو یہ چیز ہے, یہ چار چیزیں اسلام نے منع کی. تو بھائی یہ مشکل شریعت ہے کہ آسان؟ آسان ہے نا, پھر بھی لوگ آپ دیکھیں کہ ان چیزوں کے بارے میں الجھے, تو پھر نہ شکری کی حد ہے کہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آسانی کے ساتھ سب کچھ بتا کے یہ سب کچھ کر دیا. اب دیکھیے اسلام کی خوبصورتی, اتنی کروڑوں چیزوں میں صرف چار چیزیں حرام کے باوجود پھر کہا ہم نے تو, پھر بھی اگر کوئی مجبور ہو جائے, اس قرار کا لفظ ہے یہاں, داد داد رو رہا اس کا روٹ ہے, مجبور بے بس, کسی ایسی چیز کے لیے مجبور کر دیا جانا جو کسی شخص کے لیے ناپسندیدہ اور نقصان دہ ہو. یعنی فورسڈ, فورسڈ کوئی کسی کو فورس کرتے, کیسا فورس ہو کہ وہ نکل ہی نہیں سکتا. مثال ہے کہ کوئی کسی کو گن پوائنٹ پہ دے کے ایک کھاؤ مردہ, کوئی اس کی جان لینے کا خطرہ, عزت لینے کا خطرہ ہے, کوئی پوائنٹ ایسا ہے, یا پھر بھوک لگ سکتی ہے, ایسی اضطراری کیفیت ہوتی ہے بھوک کی, فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہم پڑھیں گے, کیسی بھوک جس میں پیٹ انتڑیوں کو لگ گئے, کوئی کسی صحرا میں پھنس گیا, اب اس کو وہاں کچھ مل ہی نہیں رہا, کچھ مل ہی نہیں رہا بن فرض, وہاں گیا دیکھا کہ ایک کوئی بھی بکری تھی وہ مردہ پڑی تھی, اب مرنے سے پہلے بہتر ہے کہ وہ کھا لے گا. تو اسلام کی خوبصورتی کیا ہے, ایک طرف شریعت آسان بہت ہے اگر آپ اس کے اصل پہ رہیں, لیکن ساتھ ہی کہا کہ حالات اگر بدل جائے ایسی مجبوری ہے تو اسلام کہتے نو پرابلم, یہ ریزن نہیں ہے, اصل حکم اللہ کا ماننا ہے, دیٹس اٹ. نہ اللہ کو پک سے کوئی نفرت ہے, نہ اللہ کو اس سے ہے کچھ ہے, یہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ ہمیں کیا سکھاتے ہیں کہ تم میری بات مانو, کہ اگر پھر بھی مجبور ہو فمنستر باغی نہ بھی بنو, ڈونٹ بی ٹرانسلیشن, ٹرانسلیشن میں نہ ہو, بغاوت کے جذبے کے ساتھ نہ غلط کام کرو, ولا عاد اور عادی نہ بن جاؤ, یوز ٹو نہ ہو جاؤ کہ ہم روز ہی اب یہ کھائیں گے باہر کچن اور بنا اور یہ ہے, یا دشمنی یا بغاوت عدوت عداوت کا دلچسپ بنو تو فلا اسما لے پھر کوئی دینا نہیں. اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں, اکراہ. سمجھ لیجیے جب کسی کو کوئی مجبور کر دے کسی حرام کام پہ, یا چونکہ کھانے پینے کی بات ہے تو اسی پہ رکھوں گی میں, لیکن اس پہ اختلاف دوسرے طریقوں پہ بھی ہے, کوئی کسی کو مجبور کرتا ہے کہ یہ گناہ کرو, بعض عورتوں کے خیال میں کہ ان کے شوہر ان کو مجبور کرتے ہیں کہ فلپنگ کرو, مثال ہے. اگر کوئی کسی کو مجبور کر کے کوئی کام کراتا ہے, جیسے یہاں مثال ہے کھانے کی, کسی نے مجبور کر دیا کہ کھاؤ تم یہ حرام, اب کیا ہے اس نے کھا لیا, گناہ پھر بھی ہے, لیکن اس کے گناہ پہ اللہ کی طرف سے معافی کی امید ہے, फिर से वो मजबूर था, बात समझ गए। मजबूरियों में किए हुए गुनाहों पे भी गुनाह होता है, लेकिन अल्लाह फिर उससे जरा सी नरमी कर देगा कि ये इसको अगर इख्तियार दिया जाता तो ये काम ना है, ठीक है। अब यहाँ ये मजबूरी शौक की मजबूरी नहीं है, पेश की मजबूरी नहीं कि मेरी मजबूरी ये है कि मैं मैकडोनल्ड के चिकन के बगैर रह नहीं सकती, आई कैंट वेट, ये नहीं है, ठीक है। इस करार के मौत और हयात का मामला है, जिंदगी जीना मरना, तो फिर कितना लेना है, ज्यादा नहीं करनी, यानी कि पेट भर के खा लो, फिर दो लुकमे एक लुकमा उतनी दूर पहुंच जाए जहां जिंदगी बचाने का सामान मिल जाए, यानी कि काम का हुसन है। इस नई कंडीशन हालात, यानी आप कह सकते एग्जेम्पशन मिल जाते हर जगह, एग्जाम सर्टिफिकेट नहीं है कि देखो आम हालात में नहीं करते, अल्लाह का शुक्र है, मजबूर हो जाते हो तो फिर अगर पड़ जाए इन्नल्लाह गफूर रहीम, ये लफ्ज़ गफूर रहीम क्या बता रहा है, गुनाह है बट अल्लाह माफ कर देगा, फिक्र ना करो और अल्लाह ताला इसमें तुम्हें आसानी पर डाल देगा। आपको ये सब पढ़ते हुए कैसे लग रहा है, मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं, सच बताऊं, सिर्फ एक बात, वल्लज़ीना आमनू अशद्द हुब्बन लिल्लाह, जिसको रब से मोहब्बत हो गई उसको ये बातें बड़ी लगेंगी। जिनसे प्यार होता लोग क्या कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए कुआं खोद दूं, मैं तुम्हारे लिए आसमान से सितारे तोड़ लो, तोड़ के तो लाओ जरा, कह दे कभी से महबूबा लाओ, फिर देखते क्या होता है, वो पता नहीं
डिटेल से सूरत अल-अराफ में समझेंगे आप, अल्लाह ने जिंदगी दी तो समझाऊंगी, ना भी हुआ तो आप किसी और से समझ लीजिएगा, लेकिन वहां आपको पता चलेगा कि शैतान का पहला हमला इंसान पर क्या था, कि उसने उसके पेट में हराम का लुकमा डाला, वो हराम ही था ना, और उसका लिबास उतर गया। कल के सबक में जो था ना कि फक्शा सुअफल फक्शा, तो हराम काम हर तरह के देखने सुनने बोलने करने छूने करने, ये खाने पीने के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व है। शैतान हमें पहले इन गलत चीजों में इन्वॉल्व करता है, आप खाते हैं चॉकलेट्स, आप केयर ही नहीं करते इसमें वाइन थी कि नहीं, आप जेलेटिन वाली चीजें खा लेते हैं, बस शैतान आपके ऊपर है। फिर शैतान कहता है गर्मी लगती है, बच्चा कपड़े पहनो, छोटे कपड़े पहनो, कुछ नहीं होता। फिर जब गंदे कपड़े होते हैं तो फिर शैतान कहते हैं क्या हर्ज है, कुछ नहीं, वो आपको है। फिर आप इस तरह अपने बेचैन है, नींद ही नहीं आ रही, कभी आपका गला दबाएगा, कभी आपके बाजू दबाएगा, कभी आपको डरावने ख्वाब आएंगे, आप इस तरह आप समझेंगे हम बीमार हैं, बीमार नहीं होते, हम शैतान के काबू में होते हैं।
तो वैसे
नहीं, हलाल मीट भी बड़ा मिलता है, अब आप खाएंगी तो आपका ही साइड पे अमल हो जाएगा माशाल्लाह।
बाहर अगर पता कि ये ऐसे बनकर है, हलाल नहीं बनकर आया,
जरूरी नहीं खाओ, सब्जी खा लो, बहुत कुछ। फिर बाकी चीजें खाने में भी ये देखना होगा ना कि उसमें चर्बी वो ना हो, ऑयल वो ना डला हो जिसमें ऐसी चीजें हो, इसकी बहुत सारी डिटेल है ना। जैसे आप देखिए कि मैता हराम है ना, तो आप जब आप कोई भी चीज लेते हैं, बहुत सारी मिसालें हैं प्रैक्टिकली देखिए कि हम एक चेन से बहुत, जब अमेरिका में गए तो बहुत अच्छी उनकी फिश लगती थी, बहुत दफा खाई, अब क्या हुआ कि पसंद थी, बाद में वहां रिसर्चेस भी आती रहती। एक तो ये लोगों को आदत होती ई मेलें भेजने की, कभी एक के खिलाफ कभी दूसरे के, जब तक रिसर्च ना करें कभी कोई चीज आगे ना भेजें, ज्यादती होगी, जिम्मेदारी होगी आप पे होगा। खैर उसमें क्या हुआ कि जो जिस चेन से हम फिश खाते थे उनकी तरफ से एक मेरे हस्बैंड को इन्फॉर्मेशन की मिली होगी कि वो सेम ऑयल यूज करते हैं चिकन का भी फ्राई करने में और फिश को भी। खैर फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमने पूछा, रिसर्च करते हैं, उस लड़की ने हमें बताया कि जब हम फर्स्ट टाइम ऑयल डालते हैं, हफ्ते में शायद एक या दो दफा ऑयल पूरा चेंज करते हैं वो अपने फ्रायर्स का, और फिल्टर उसको रोज ही करते हैं, फिल्टर करने में भी ज़ाहिर है वो असर तो अंदर आ जाता है। तो उसने कहा कि जिस दिन फ्रेश ऑयल हो, यानी जैसे अगर आज नया डाला तो पहली दफे फिश किए तो वो तो सही है, ठीक है, लेकिन अब उसके बाद उसमें चिकन का ऑर्डर आ गया, चिकन आ गया, तो उसने बताया कि आपको जब भी जरूर खाना होता पूछ ले कि क्या ये फ्रेश ऑयल में बनी है या इस फिल्टर्ड ऑयल में आई है।
कोशिश, अगर जिसको शौक होगा वो कोशिश करके पूछ लेगा ना, और जिसको शक आएगा वो कहेगा पता नहीं, अगले को पता नहीं, पता मैं नहीं खाता तो नहीं खाए, तो क्या अल्लाह के लिए इतना थोड़ा सा छोड़ने में क्या हमें कोई मुश्किल आ जाएगी? कल आप देखेंगे कि अल्लाह ने जन्नत में जाके आपको पता नहीं क्या कुछ खिलाना है। ठीक है, अब ये देखिए खाने पीने की बातें हो गई खत्म, बस अब क्या हुआ? इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अनज़लल्लाहु मिनल किताब, जो लोग इन बातों को छुपाते हैं जो अल्लाह ने अपनी किताब में नाजिल फरमाई। ये क्या हुआ, टॉपिक बदल गया? नहीं, आपको याद आया पीछे भी ऐसी एक आयत थी, जहां इस तरह के खाने पीने हलाल हराम के मसले होंगे ना, उसके बाद आपको याद दिखेगी क्या कि कुछ लोग जो दीन सिखाते हुए लोगों से डर जाते हैं कि अगर मैंने तो मेरे से नाराज है, भाई ये नहीं खा सकते, वो नहीं, छुपा लो, छोड़ो छोड़ो, नहीं 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 ठीक है, जो आपका दिल है पूछ ले किसी से, यानी हक मसलों को खोलने की बजाय छुपा लेना। वयश तरुण भी समनन कलीला, और इसके बदले में अल्लाह से थोड़ी कीमत, यानी इसके बदले में थोड़ी कीमत ले लेनी, यानी दुनिया का भी थोड़ा फायदा ले लेना, लोगों की वाह वाह ले लेनी, या ज्यादा लोग आपकी बात सुनने आ गए, या लोग आपसे खुश है कि ये बड़ी नरम बात करते हैं, हाँ भाई इन्होंने कह दिया था ना खाओ, देखो मैंने उनसे पूछा है, वो मौलवी साहब कहते हैं खा लो, ये मुराद है, यानी उसके बदले में कुछ ना कुछ दुनिया का फायदा ले लिया, लोगों में खुश हो गए। उलाइका मा याकुलून फी बुतूनिहिम इल्लन्नार, ये वो लोग हैं जो नहीं खाते मगर अपने पेटों में आग भरते, यानी दीन के हलाल हराम को छुपाकर लोगों से फायदे या माल वसूल करके बटोर लिया, तो गोया के वो पेट में आग डाल दी, क्योंकि लोगों को ये मसले हजम नहीं होते। आपको तो हो सकता है इतनी मुश्किल ना हो इन आयतों को सुनकर, क्योंकि आप पहले ही नहीं खाते होंगे ऐसी चीजें, लेकिन आप सोचिए कि जो शुरू से खाता पीता है, अब उसको इन आयतों पे रुकना पड़ा, वो आ गया आज पहली दफा कुरान सुनने, चलो भाई देखते हैं ये क्या कहते हैं, इधर आए अब बातों बातों में उनको पता चल गया जी ये फुलां का भी नहीं चिकन खा सकते, फुलां का नहीं, वो यहां से उठ के चला जाए, हाय मैं नहीं जाता जी ये कैसे हैं, अब लोग डर जाए, नहीं 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 वो डर जा रही है, आप उनको रोक लें, उनको कह दें नहीं नहीं आप अपनी मर्जी कर लें, देख लें रुख्सत मौजूद है, और आज के दौर का पेट जुमला के ये कॉन्ट्राडिक्टरी इशू है, सीधे सीधे हलाल को लोग पीछे करके उसको कॉन्ट्राडिक्टरी कह देते हैं। तो अल्लाह कहते हैं किसी ने भी दुनिया के किसी फायदे की खातिर अगर लोगों को झूठ बताया क्या हाल होगा उनका, पहली बात है पेट में आग है, कोई चाहता है पेट में आग जाए? आप जरा अगली आयतों को सुनिए, वला युकल्लिमुहुल्लाह, मैं तो इसको अपने ऊपर ले रही हूँ क्योंकि इस वक्त मैं ही सुना रही हूँ ना, पढ़ा रही हूँ मैं आपके डर से हक छुपा लूं कि हाय आप नाराज हो जाएंगी, आप छोड़ देंगी, हक तो हक है, अलहक मर्रा, कड़वा लगे मीठा लगे ये तो है, करेले करेले ही है, चाहे आप उसका नाम कुछ भी रख दें, तो जिसको अल्लाह से प्यार है वो कहेगा नो प्रॉब्लम, बड़ी बात ही नहीं है, जिसको नहीं प्यार वो 100 उजर ढूंढेगा, तो मेरा फर्ज क्या है कि मैं सच बोलूं, मैं आपको खुश ना करूं कि आप खुश रहें, नहीं, नुकसान क्या है, वला युकल्लिमुहुमुल्लाह, अल्लाह उनसे बात नहीं करेगा, यानी मैं अपने ऊपर लेती हूँ कि अगर मैंने ये बातें छुपाई तो मेरा ईमान क्या है कि क्यामत के दिन अल्लाह ताला मुझसे बात ही नहीं करेगा, जो मैं तुमसे नहीं बोलता, यौमल क्यामा, क्यामत के दिन, जो तो है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, के तहत अल्लाह से प्यार करने वाला वो तो इस बात पे ही बेहोश हो जाएगा, हाय अल्लाह तो मुझसे बात नहीं करेगा, है ना, कितनी तड़प होती है एक बंदे को जिससे मोहब्बत है वो उससे बात करे, कलाम करे, दिन में कई बार तो नमाजों में अल्लाह से बातें करते हैं, या का नाबुदु या का नस्ताइन, ये कुरान हम पढ़ते हैं तो अल्लाह हमसे बात करता है, नमाज हम पढ़ते हैं तो हम अल्लाह से बातें करते हैं, कुरान पढ़ते हुए अल्लाह हमसे बातें करता है, तो जिसको दुनिया में मोहब्बत ही वो तो चीखेगा, और जरा सोचिए जिसको दुनिया में अल्लाह के इस कलाम से मोहब्बत नहीं, आप कुरान के लिए बुलाते हैं वो कहते हैं देखेंगे, हु केयर्स, हैया अल सलाह हैया अल फलाह की आवाजें आती है वो कहते हैं देखेंगे पहले काम कर लें अपने, जिसने दुनिया में अल्लाह से कलाम करना नहीं चाहा, जब उसको कोई कहेगा तुमसे अल्लाह बात नहीं करेगा, कहेगा चलो अच्छा है ना ही डिस्टर्ब करे मुझे तो अच्छा। अब देखिए बच्चे दो तरह के होते हैं ना, एक बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है, माँ उसको समझाती है ना समझे को, जरा से माँ उसको ये कहते ना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, तो आप देखिए फिर वो बच्चा आगे मम्मी प्लीज ओ कभी प्यार करेंगे कभी लाड करेंगे, नहीं मम्मी मैं ऐसे नहीं करूंगा, उसको जान पे पड़ जाती है, और आपको ये भी पता है कि हमारा प्यारा कोई भी हो शौहर ही क्यों ना हो वो हमें गुस्सा कर ले बोल ले कोई बात कर ले बुरा तो लगता है इतना नहीं, और अगर वो मुंह बंद करके बैठ जाए कि मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा, मुंह फेर के ही सो जाए तो चैन आता है, इंसान किसी की बातें बर्दाश्त कर सकता है, उसकी खामोशी नहीं बर्दाश्त कर सकता, इसलिए अपने बच्चों को अपनी खामोशियों का अधिक करें। हमारे साथ साथी जो रहते हैं कई साल से, तो मैंने एक दिन उनसे ऐसे ही पूछा कि आपको मेरे बारे में क्या पता है, तो कहने लगी कि जब आपको गुस्सा आता है तब चुप कर जाती है, आप बोलती नहीं है कोई बात। तो मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं जुबान नहीं गंदी करती अपनी। खामोशी से बंदा समझ जाता है, शुरू में बंदा बात करता है करता है, नहीं आती समझ तो फिर चुप कर दो। आप सोचे अब क्यामत के दिन गए, यहां तो अल्लाह को देखा नहीं, उसको ढूंढते हैं, क्यामत के दिन पता है कि अल्लाह है, हमसे बात ही नहीं कर रहा। वला युज़क्की हिम, पाक भी नहीं करेगा, जो गंदे गुनाहों के लिपड़े हुए आगे हो पड़े रहो, मैं तुम्हारा तज़किया नहीं करूंगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। यहाँ तो सिर्फ ये तीन चीजें है ना, आगे आप पढ़ेंगे कुरान पाक में, तो वला यंज़ुरू इलैहिम, अल्लाह उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। जब दिल में किसी के लिए गुस्सा होता है ना, ग्रज होता है, तो बंदा उससे नजरें नहीं मिलाना चाहता, कहता पीछे हो जाओ, मैं नहीं तुम्हें देखती, मैं नहीं तुमसे बात करती। सोच लीजिए क्यामत के दिन अगर अल्लाह मुझे ये कह दे कि चले जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता, तुमसे बात नहीं करना चाहता, तो आप बताइए कि हम किस दर पे जाएंगे। वहां कोई जिंदा मुर्दा नहीं होगा, वहां तो सारे उसके दर के सवाली। أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى, बड़े दुख और सदमे के साथ ये बात हो रही है, ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली। इस पे गौर फरमाइएगा, ये बार बार आयत आती मुनाफिकीन के तस्करे में भी आई थी ना, अल्फाज के फर्क से, कि हिदायत के सौदागर थे गुमराही लेकर आ गए। आप सब मैं इधर क्यों आते हैं, हिदायत लेने आते हैं ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, गाइडेंस चाहते हैं, आए आप गाइडेंस लेने और आप यहां से गुमराही लेके चले गए, ऐसे नहीं समझ आएगी। मैं आपको दूसरी तरह समझाती हूँ, आप रोड पे निकले कहीं जाने के लिए, रास्ता आपको पता था लेकिन शक था, आप कहते चलो किसी को पूछ भी लूं तो अच्छा है, रह जाते किसी को पूछ लिया, यही जाना होगा, नहीं 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 इधर नहीं जाना उधर जाना था, आप कहते थे वाकई हाँ हाँ ठीक है, आप उसके कहने पे यू टर्न लेके पीछे जाते हैं 20-25 मील, कोई असरात नहीं है, फिर घूमते घामते पूछते हैं किसी से, वो कहते हैं आप तो उलट रुख पे जा रही हैं, आप तो उधर जाना था, क्या होगा, हाय मैं तो सीधे रास्ते पे थी, उसने मुझे उल्टे पे डाल दिया, कितना गुस्सा आएगा उस पर। अब अपने ऊपर, एक बंदा सीधे रास्ते पे जा रहा है, उसको एक कह रहा है ये सीधा चलते जाओ चलते जाओ, किसी और की बात तो मैं के उल्टे पे आ गए, ये है हिदायत के बदले गुमराही। यहाँ कुरान सीखने आए, दीन सीखने आए, अल्लाह की रजा लेने आए, यहाँ से गुमराही मिली, तो पहले तो मैं अपने लिए आप सबके लिए दुआ करूंगी कि अल्लाह मुझे आपको भटकाने का ना बनाना। दुनिया के नाम पे तो पहले लोग भटक रहे हैं, शराबे पीते, बुरा चोरियां चकारियां करते, दीन के नाम पे ना भटकाए। और देखें हमारे पास तो एक न्यू बॉर्न बहन बैठी हुई है ना, मैं तो आपको भी अपने सामने पेश करके कहती हूँ, अपने आप को भी, कि अल्लाह मुझे आपको भटकाने का जरिया ना बनाना, कि कल तक आप ठीक थी और आज आपको मैं गलत सोच पर डाल दूं। क्यों? इसलिए कि हिदायत बहुत कीमती चीज है। दुनिया में आप इधर की भी इधर 20 मील चलेंगे वापस आ जाएंगे, और दुनिया से आखिरत का सफर तो मन में है, कोई दोबारा जिंदगी में एक मोड़ नहीं मिलना वापस मरने के बाद कि जाके फिर नया दीन सीख के आ जाए। तो हमेशा दुआ किया करें कि दिन से रात मुस्तकीम, अकेले में रातों को तन्हाई में अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह ये औरत हमें गुमराह ना कर दे, ये मुसलमान होने के नाम पे हमें मुसलमान गुमराह ना कर दे। और अब देखिए वल अजाब विल मगफिरा, दूसरी चोट, मगफरत लेने आए थे अजाब लेके चले गए। कितनी बदनसीबी की बात है कि जो आया ही नहीं वो तो है ही बदनसीब, जो आए और बख्शिश की बजाय अजाब लेके चला जाए वो कैसे, इधर आए बैठे पढ़ने हैं कुछ और करते रहे, आए दीन सीखने कुछ और करके चले गए, काम दूसरे बीच में करते रहे, सोचे ये कि यहाँ से उठ के अब किधर जाना है, उधर की प्लान बनाते रहे, बीच में ईमेलें चेक करते रहे, बीच में मैसेजेस करते रहे। मैं तो कहती एक सेकंड के लिए भी अगर हमारी सोच बीच में भटकती वो भी शिरक है, क्योंकि ये नमाज है एक किस्म की, हम अल्लाह के सामने बैठे होते हैं, इसलिए अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं फमा असबरहुम अलल नार, बस आज कितना सबर है इनका आग पे। देखिए ये मुहावरा जो वर्ब है, अल्लाह कहते हैं दुनिया में नहीं सबर कर सके ना हराम हलाल से, बाप दादा के तौर तरीकों से हजम सबर नहीं कर सके ना, इनको अप टू डेट रहना था, इनको वो कपड़े पहनने थे जो माशरे वालों को अच्छे लगते हैं, अल्लाह की पसंद नापसंद की फिक्र नहीं थी, बेसब्रे थे ना दुनिया में, आज पे सब्र कर लो, कौन सा सब्र बेहतर है। ये 4 दिन की दुनिया नफ्स पे थोड़ी सी चोट है, और आप शरीयत को पढ़ रहे हैं, आपको मुश्किल लग रही है, कितना को मुश्किल है शरीयत में, ये तो आप दूर से इस कुरान और इस्लाम देखते हैं तो मुश्किल लगता है, ये कुरान तो आपको 4-6 लोग ही पढ़ा रहे होंगे, ज्यादा तो पढ़ाते भी नहीं है, वो तो आपको कवालियों और नातों और भजनों में डाल देंगे कि बस अल्लाह हु कहते रहो, अल्लाह तुम्हारे अंदर आ गया, नऊज़ु बिल्लाह, कोई अंदर नहीं आता अल्लाह, कोई अल्लाह गाने सुन सुन के और कवालियां सुन सुन के नहीं खुश होता, उसको तो आपसे इताअत चाहिए, और इताअत कैसे करनी है वो इस किताब में तो अल्लाह ताला इशारा दे रहे हैं कि इस दुनिया में रुक दो, थोड़ी सी मुश्किल इस्लाम के लिए दीन के लिए आती है डाल लो, कल फिर तुम्हें आसानियां मिलेंगी, और ज़ालिका बि अन्नल्लाह नज़्ज़ल किताब बिलहक, देखिए एक एक आयत मोतियों की तरह जुड़ी हुई है, अल्लाह कहते हैं क्यों ना अल्लाह को गुस्सा आए तुम पे, ज़ालिका ये अहले किताब हक से दूर क्यों गए, क्योंकि बि अन्नल्लाह नज़्ज़ल किताब बिलहक, ये इस वजह से हुआ कि अल्लाह ने तो ठीक ठीक हक के मुताबिक किताब नाजिल की थी, लेकिन वह इन्नल्लज़ीनख्तलफू फिल किताब, मगर जिन लोगों ने इख्तलाफ, लफी शिकाकिन बईद, वो तो बहुत दूर हिदायत से गुजर गए, जिद में आ गए। इशारा क्या है इस आयत में, बल्कि कि अल्लाह ने जब हक दे जो दिया, देखिए एक होता है कि कुरान नाजिल ना हुआ होता, अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी हमें ना पता चली होती तो हम गलत काम करते और कल जहन्नुम में जाते, तो हम कह सकते थे ना अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला हमें पता ही नहीं था आपको हमसे क्या चाहिए, भी ऐसे ही है ना, जैसे कोई नया नया बंदा कहीं आता है और एक आधे दिन के बाद वो देखता है कि घर वाले का मूड खराब है, मेरी बात नहीं मतलब खुश नहीं है, तो वो सोचता है कि भाजी मुझे बताओ मैंने क्या गलती की है, आप बस मुझे बता दो आपको क्या अच्छा नहीं लगता, आपको क्या अच्छा लगता है मैं वो करूं, यही है ना, जब कोई बताता ही नहीं है तो हम कैसे रुके, तो अल्लाह ने तो बता दिया, ज़ालिका बिअन्नल्लाह नज़्ज़ल अल-किताब बिलहक, फिर क्यों मुसलमान गलत काम करता है आज भी, पढ़ता नहीं है किताब, कितने मुसलमानों ने ये आयतें पढ़ी हुई है समझ के, कितनों के दिलों पर ये नाजिल होती हैं, नहीं होती, हम विर्द करते हैं, हम इसकी कुरान खानियां करते हैं, वजीफे करते हैं, बड़ी बड़ी तस्वीरों पे पढ़ते हैं, मुश्किलात में एक एक आयत के 4-4 हजार 20-20 हजार दफा विर्द कर लेते हैं, लेकिन ये हक हमारे दिल पे नहीं आता, तो अल्लाह कहते हैं मैंने अपनी मर्जी बता दी है, अब तुम नहीं पढ़ते तुम्हारी मर्जी, और याद रखिए जो किताब नहीं पढ़ता ना लाजमी तौर पर इख्तलाफात का शिकार होगा, यही अहले किताब का मसला था, मनल्लज़ी नख्तलफु फिल किताब, आज लोग किताब ही के मामले में इख्तलाफ राय कर रहे हैं, कैसे पढ़ते कोई नहीं, उसकी बात इसकी बात इसकी बात उसकी बात, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप देखिए कि यार थोड़ी दूर एजडा है ना, हम में से कोई एजडा जाए ना, ना कभी गया ना पता, और उसके अंदर क्या उसके बारे में बहस शुरू करते, वो ऐसा है वो इधर है ये है वो है, हमें हक पहुंचते, कोई कह के आप कभी गए हो, नहीं, कभी उन्होंने आपसे मिसट्रीट किया, नहीं, तो मेरा बाहर बैठ के बातें क्यों कर रहे हो, यही लोगों का हाल आज इस्लाम के साथ भी है, इस्लाम को देखा नहीं पढ़ा नहीं सुना नहीं समझा नहीं, बाहर बैठ के बातें करते हैं, मुसलमान ऐसे मुसलमान ऐसे, देखिए मुसलमान जैसे भी हो इस्लाम ऐसा नहीं है, दुख की बात है कि आज इस्लाम और मुसलमान दो मुख्तलिफ चीजें हैं खास हद तक, लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सच्चे लोग मौजूद हैं तभी दीन मौजूद है, तो अल्लाह ताला कहता है कि किताब आने के बाद जब इख्तलाफ आता है ना तो लफी शिकाक किम बईद, बस इसको समझ ले तो आपको पूरी बात समझ आएगी, शिकाक लफ्ज क्या है, शक, एक होता है शक वो नहीं डाउट नहीं, शक हटना किसी चीज का अलग हो जाना, हट धर्मी की वजह से हक से दूर रहने को शिकाक कहते हैं, ये कैसे है? मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ कि आपको इस होटल में आना था क्लास लेने के लिए, पहली दफा आप आए, आप यहां से हाईवे से उतरे, आप ये हाईवे मैनर पे मुड़ने के बजाय इसे अगली गली में आपको स्कूल नहीं दिखा, आप इधर इधर थोड़ा बहुत घूमा घामे नहीं मिला, फिर आप क्या कहते हैं किसी से पूछ ले इधर देखो दिखेगा, वाकई ऐसा ही होगा, आप उधर से इधर आएंगे देखेंगे सामने ही आपको इतनी बड़ी जगह दिख जाएगी, ये तो है शिकाक, आप भटके थे लेकिन अभी थोड़े करीब थे, शिकाक इन बईद के बईद दूर को कहते हैं, आपको आना इधर ही था, मिसाल है कि आपको वेम्बले में इस जगह पे इस होटल में आना था क्लास लेने, और आप ईस्ट लंदन में ढूंढते फिर इस जगह को, कभी नहीं मिलेगी, ये है शिकाक हिदायत। कुछ लोग हिदायत के मोड़ के बड़े करीब ही घूम रहे होते हैं, जैसे कल हम घूम रहे थे, हमें अंदर आने की जगह नहीं मिल रही थी, वो शिकाक है, मिल गई ना। और अगर हम इसी ढूंढने ढांढने में ईस्ट लंदन पहुंच चुके होते तो नहीं मिलते हैं। तो जो लोग आज किताब नहीं पढ़ते वो शिकाक बईद है, कोसों दूर है अल्लाह की मर्जी से, उनको हक भी नहीं है खुद को मुसलमान कहने का, और बातें वो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। कभी आप उनके चुटकुले सुने, कभी उनकी बातें सुने, और दुख के साथ कहूंगी कि आज मीडिया से जितना दीन फैलाया जाता है उसमें अक्सर, सारे नहीं, अच्छे चैनल बहुत सारे हैं माशाल्लाह। आज से 10-15 साल पहले कोई भी नहीं था मेरी नजर में, बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज शिकाके बईद वाले चैनल्स भी आपको बहुत सारे दिख रहे होंगे। तो जो दीन सीखे रिसर्च करके, किस वेबसाइट से सीखना है, किस कुरान से सीखना है, आपको पता है कि गैरों के फैलाए हुए कुरान के नुस्खे अब नेट पे आम है, जिस पे उन्होंने अपने सारे अकायद को सच साबित किया हुआ। इसी आज आपने इस कुरान को पढ़ा, आपको चार चीजें हराम मिली ना, गैर अल्लाह के जरिए। आप पढ़ के देखिए, ऐसे कुरान आज भी मौजूद है जिन्होंने गैरों के आगे सजदा करने तक को कुरान से साबित किया, बुजुर्गों के नाम की नजरें, नियाजें, 11वीं, चादरें चढ़ाना, कुरान से साबित किया हुआ है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें हिदायत के बाद गुमराह ना करे। ये था आज का सबक। अब आप कोई सवाल करना चाहें तो पूछिए जी। आप प्लीज ऑनलाइन से भी टेक्स्ट खोल दें और आप लोग भी लिखिए, आप लोग अपने अपनी फीलिंग्स लिखिए अपनी इधर जी। देखिए आपने आखिरी आयतों में क्या पढ़ा है, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अनज़ल। एक होता है जब आप किसी एक ऐसी जगह पे बैठे, जैसे इस वक्त मैं आपको पढ़ाने के ख्याल से बैठी हूँ ना, आप सब मेरे ट्रस्ट पे बैठे हुए ना, मैं यहाँ सब बातें छुपा लूँ, आपको बताऊँ ही ना, बात ही ना करूँ, ठीक है, ये मेरा एक ख्यानत होगी, कल मेरे अल्लाह ताला की पकड़ होगी, आप सबको हिदायत मिल जाएगी, मुझसे पढ़ के मुझे नहीं मिलेगी, और अल्लाह ऐसा कभी ना करे। दूसरी सूरत है वो जो आपने बयान की ऑनलाइन साथियों के लिए, हल्का सा खुलासा कि किसी शादी में नाफरमानी के काम पे कुछ रिश्तेदार जो दूसरे शहरों से आए हुए थे, उन्होंने कहा इसको बंद करो, घर वालों ने कहा नहीं हमने नहीं बंद करना, बहुत पैसे दिए हुए, सगे भाई थे, जिसको जाना है चले जाओ, हमने डीजे को इतने पैसे दिए, वो उठ के चले गए। आपने भी कहा तो आपको कुछ लोगों ने बुरा भला कहा कि आप क्यों बोली, ये कहा ना। देखिए ऐसे मामलात को समझ लें, ये हमारे सबकी जिंदगी में हर वक्त ही आते हैं, और ये जो रेवोल्यूशनरी दौर चल रहा है ना इस वक्त इस्लाम का, ये तो हर मोड़ पे ही आएंगे, कुछ लोगों को दीन मिल रहा है कुछ को नहीं मिल रहा, तो ये इंटरफेस है इस वक्त, ग्रे और ब्लैक का जोन चल रहा है। तो पहली बात है कि अगर लोग जानते हैं कि आप कुरान पढ़ती हैं ना, आपको कभी भी उस लास्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करना चाहिए, बिल्कुल समझ लें ये बात। हकीकत में आप में से बहुत सारों को मेरी ये बात अच्छी भी नहीं लगेगी, आप कहेंगे अल्लाह करे ब्रेक ही हो जाए, ये बात ही ना करें, सच कह रही हूँ, इट्स नॉट अ जोक। इन पे किसी ऐसी जगह पे जाना पड़ सकता है, थोड़े दिन बाद जाना पड़ सकता है, आपके अपने बहन भाइयों में शादियां आ सकती हैं। मोमिन कभी आखिरी मोमेंट का इंतजार नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात है सिर्फ खुद को नहीं बचाना, उनको भी बचाना है। मैं आपकी जगह हूं, मेरे भाई के घर शादी है, और अल्लाह ना करे मुझे पता चले कि वहां नाफरमानी की चीज है, तो मैं तो यही तो वक्त है जब मैं अपनी मोहब्बत लूंगी उससे, फिर कहूंगी आई लव यू माई ब्रदर, मुझे तुमसे प्यार है, और ये जो तुम करने लगे हो ये ठीक नहीं है, प्यार धोस धांधली लाड जो भी है कि ये होगा तो मैं नहीं आऊंगी। वो कहते हैं ना हो तो ना से, फिर मुझे क्या शौक है इतना जाने का हा? और दूसरी बात है कि अगर मैं तरीके से सलीके से उस तक मैसेज पहुंचाऊं, और बात ऐसे नहीं पहुंचाते कि अगले का सर फाड़ दे, उसको पहले वो चीज तो दें जिसने आपको समझ दी। होता क्या कि हम लोगों के हाथों में छुरियां पकड़ा देते हैं और उनको चलानी नहीं सिखाते। बार दफा हैंडल से पकड़ने की बजाय वो आगे से उसके फल से पकड़ रहे होते हैं जहां से हाथ सीधा होता है। आज के दौर की तबलीग का बेहतरीन तरीका यह है कि एक दिन भी ना इंतजार करें और हर वो बंदा जो अल्लाह के बाद दीन इस्लाम ये तालीमात से दूर है किसी तरह उसको इससे जोड़े। सीडी है, रिकॉर्डिंग है, वेबसाइट है, लाइव क्लासेस है, उनके शहरों में अच्छे हक बात वाले आलिम होंगे। ये तो एक जनरल बात है। दूसरी बात है कि एक इंसिडेंट आ गया, अब सारे एकदम तो हमारी बात सुनेंगे भी नहीं, तो आप कम से कम अपनी जान इस तरह बचा सकना करें। देखिए इस वक्त सबको पता है कि आप कुरान पढ़ रही हैं, हम में से ये इरम इसको सही कीजिएगा प्लीज। आप देखिए पीछे आवाज आ रही, आप देखिए कि आपके लोगों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को पता चल चुका है ना कि आप कुरान पढ़ रहे हैं। अब इस वक्त आप अभी मुफ्ती नहीं बने, अभी आप उस्ताद भी नहीं बने, लेकिन आप सीकर्स ऑफ नॉलेज तो बन गए ना। आप अपने अमली इजहार से जाए करें। आपके भाई के घर शादी है, लेकिन जिस चीज में मुखालफत दीन की अल्लाह की, उस महफिल का हिस्सा नहीं बनेंगे। आप पढ़ेंगे दो दफा ये मजमून, बस दो तीन पारों के बाद आ रहा है सूरत अन्नास में, निसा में डिटेल से पढ़ेंगे, सूरत मायदा में पढ़ेंगे, और आगे जाके भी ये सिलसिला चलता रहेगा, सूरत अन्नाम में भी आएगा कि वो महफिल है जहां अल्लाह और उसके दीन का मजाक उड़ाया जाए, उसकी आयतों को तोड़ा जाए। वहां ना बैठो, उठ जाओ, चले जाओ बाहर, जब वो कोई और बात करने लगे तो आ जाओ। आप जाए शादी पे, आप कह दें मैंने उस फंक्शन में नहीं बैठना, कम दूसरे कमरे में चली जाए दूसरे। मैं कहती हूँ इस वक्त एक आपका ये खड़ा होना, ये 100 लोगों को पढ़ाने से बड़ी बात होगी। सच बता रही हूँ। वो कहेंगे तो ये क्या पढ़ के आ गई है, और उनको ना फतवे दें। दूसरी हद क्या, हम जाके बीच में बैठे भी होते हैं साज संवर कर, बुरा कहते हैं की जरूरत थी, ये क्या था, बुरा भला कहेंगे। वो कोई वक्त है तबलीग का? उस माहौल में उनके दिल में बात जाएगी, वो तो आपसे जान छुड़ाएंगे। पहले बता दें मैं आऊंगी नहीं, आऊंगी तो मैं इस फंक्शन में नहीं आऊंगी, और दूसरी बात है कि कोई मुझे मजबूर ना करे। हाँ मुझे कोई मजबूर करेगा तो फिर मैं वहां सकूंगी ना। सिर्फ आप उस वक्त वहां बदतमीजी नहीं करनी चाहिए घर वाले को, वो मौका तबलीग का नहीं होता, वो हिजरत का होता है। खामोशी से आ जाए, अगले की इज्जत रख, खामोश हम जा रहे हैं, बताए भी ना आते, आ जाए, बाद में उनको खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि वो एट वंस नहीं चेंज कर सकते सब कुछ। जैसे आपने खुद कहा कि उन्होंने डीजे को दिया, वो दिया, रोकना है तो पहले रोक ले, ठीक है। और जो बुलाते हैं उनको कम से कम इतनी इज्जत जरूर करनी चाहिए उनकी कि वो दूसरी तरफ कर ले, कुछ हिस्सा अलग का रख दें। पहले दौर में आप देखिए कि शादियों में टेंट लगते थे तो एक जगह लिखा होता था मस्तूरात औरतों के लिए, तब औरतें मस्तूरा होती थी, छुपी होती थी तो मस्तूरात थी। आज औरतें खुल गई, वो सबके बीच में लाके बिठा देते हैं। अब आप जले कुड़े, आपके कानों में कुछ जा रहा है, आपको मर्द दिख रहे हैं, कुछ भी है, मजबूर रिश्तेदारियों के नाम पे बैठे हैं, उनको आपसे प्यार नहीं है। अगर उनको आपसे प्यार होता तो वो आपकी इज्जत जरूर करते, ठीक है। तो ये हिजरतें वाइसेस सीखेंगे, लेकिन दूसरों के ऊपर कोई बम ब्लास्ट ना करें कि जिसकी वजह से वो आपके ऊपर जजमेंटल हो। खामोश भी नहीं रहना, अभी से कोशिश शुरू कर दें, समझाएं, लाड करें, प्यार करें। कोई मजाक है, आप देखिए कितना खर्चा करके जाते हैं। कोई शादी एक चले, यहाँ लोकल शादी भी होगी तो जोड़ा ही बनाएंगे तो 100-200 का तो बनाएंगे ना। तो बहरहाल हक बात कहनी चाहिए लेकिन तरीके के साथ। उस्ताजा जी मेरी 9 साल की बेटी कल से जिद कर रही है, आप सब सुनिएगा, अमना आप भी सुनिएगा। उस्ताजा जी मेरी 9 साल की बेटी कल से जिद कर रही है कि मामा मैंने भी शहादा लेना है, फिर मुझे भी गिफ्ट मिलेंगे। उस्ताजा जी से कहे कि मुझे भी शहादा करवाए। और साथ जुमला पूरा नहीं है मेरा ख्याल है, अगला जुमला ये था कि फिर सबसे कहेंगे मुझे गिफ्ट भी दें। इस बच्ची को बुलाए, मैं इसको वैसे गिफ्ट दे दूंगी इंशाल्लाह ताला। कहले किताब का जिबा हलाल है, यानी यहूद और क्रिश्चियन का। देखिए एग्जैक्टली कुरान की आयत में सूरत मायदा में आएगा, थोड़ा सा सब्र कर लें, ठीक है। इंशाल्लाह अगर वो सही अहले किताब है तो हो जायज है, लेकिन वो कैसे हैं पूरी कुरान की आयत के साथ आपको बताएंगे, ठीक है। जो फिर मुझे गिफ्ट मिलेगा। अमर बिन जमूह, आइन मीम रॉ, जैसे उमर लिखते हैं ना उसके आगे वाव डालते हैं, अमर बिन जमूह, जीम मीम वाव हा। आप कहते हैं कि लंगड़े थे एक टांग से, फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग के मैदान में जाना चाहते थे। कहा कि आप वहां जाके क्या करेंगे, क्यों जा रहे हैं? कहा मैं लंगड़ाता हुआ जन्नत में जाना चाहता हूँ। ये जिसको नजर आ जाए जन्नत, उसको तो फिर ये बातें कहनी नहीं पड़ती। जज़ाकअल्लाह खैर, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी الحمدللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اللہ تعالیٰ میں ہدایت پہ بلا کے کبھی واپس نہ کرے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ آپ خود اعلان کریں جی، آپ لوگ مائک لے لیجیے آن لائن پہ، یہ آپ اناؤنس کیجیے۔ یہ کوئی چیز گولڈ کی ملی ہے ان کو کہیں سے؟ پلیز جس کی ہے وہ دیکھ لیں۔ نہیں، آپ کلاس میں تھی نا، آپ اس کو رکھ لیں ہاتھ میں، کسی کی کوئی چیز کھوئی ہے تو وہ آ کے بتا کے لے لیں۔ اب اناؤنس کر دیجیے جی، آپ لوگ مائک لے لیجیے پلیز۔ اچھا فرح، کیا نام ہے آپ کا؟ ان کے ساتھ جائیں، ان کا کھانا میری طرف سے خرید کے نا ان کو دکھا دیں گے، اور یہ پکڑ لیں، پتہ نہیں کیا ان کو ساتھ لے جائیں، آ جائے گا ان کو کیا، آپ چلے آ جائیں گے۔ وعلیکم السلام، کل نہیں آئی تھی؟ تو آپ کو انہوں نے فون کیا؟
ہاں، مجھے فون کر رہی تھی، میں نے واپس فون بھی کیا تھا کلاس کے شروع میں سے ایک دو منٹ پہلے۔ طبیعت خراب ہے، یہ تو میرا کمنٹ ہے۔
السلام علیکم، آپ سے کھانا کھاؤ، آپ دعوت میرے لوگ جو بھی کھاؤ۔